अब उसने इसे कभी भी समाप्त नहीं किया। मैंने कहा, मेरा अपना विवाह देर से हुआ, थोड़े देर से जन्मे, मेरे विवाह में देर हो गई, क्या मैं बस देरी कर सकता हूँ मेरे अंतिम संस्कार के लिए? मेरी वो एक है जो मैं वास्तव में देरी से करना चाहता हूँ, वास्तव में देर से नहीं। ये घर पर फोन आ रहे थे, मैं छोड़कर नहीं जा सकता, शायद ही। और फिर मेरी पत्नी और उसके जल्दी चले जाने के बाद मेरे पास बस बहुत सारी चीजें थी, और फिर लोग अलग अलग स्थानों से हैं। प्रार्थना कर रहा था और अभी भीतर प्रवेश करते हुए और प्रभु का प्रकाशन आया, एक भाई के लिए, बहन के लिए जो यहाँ पीछे है, बीमार है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, ये बस जाना है, जाना जाना जाना। और मुझे यहाँ तक अपने कुछ मित्रों के साथ हाथ मिलाने का मौका भी नहीं मिला, जो जॉर्जिया और अलग अलग स्थानों से हैं, कनाडा से हैं। मैं आपके हाथों को नहीं मिला पाने पर बस बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। और जो भी है, आज रात फ्रेड कहाँ पर है? फ्रेड सॉटमैन, फ्रेड, आपको याद है कि जिस समय आपने मुझे कनाडा से फोन किया था, वहाँ नीचे आते हुए, और मैंने आपको बताया था कि आप कार से न आए, आप किसी भी तरह से आ गए। एक टक्कर हुई थी, जैसे उनकी कार को टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसे कि उनकी पत्नी परिवार को मार ही डाला, उनकी नाक को गहरी चोट पहुँचाई और उन सभी को अस्पताल में डाल दिया गया। कुछ समय पहले जब मैं जा रहा था, ठीक दोपहर को, भाई बहन यहाँ बाहर खड़े हुए थे, मेरी तरफ आ रहे थे, और रोजेला वहाँ पर आ गई। उसने कहा, मैं घर जा रही हूँ। मैंने कहा, रोजेला? उसने कहा, क्या बात है भाई ब्रैनम? मैंने कहा, इस बारे में मैं कुछ अजीब सा महसूस करता हूँ। देखा? कहा, क्या कुछ घटित होने जा रहा है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, ये मुझे ऐसा दिखाई देता है, मुझे कुछ तो चेतावनी मिली है। उसने कुछ मिनट पहले मुझे फोन किया, उसकी एक दुर्घटना हो गई, और सो किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन ये प्रभु का हाथ था और वो फिसल रही थी। ये उत्तर में पूरी तरह से बर्फीला है और वह इंडियाना पुलिस में फिसल गई और इस तरह से सड़क के उस ओर बहुत तेजी से फिसलने लगी, और वो चिल्लाई, हे प्रभु मेरी सहायता करें। कार फिर से इस तरह से वापस मुड़ गई, वापस आ गई और अपने दाहिने पथ में चली गई और पूरी तरह से सही रास्ते पर आ गई और ठीक इस तरह से चालू हो गई। वो रास्ते पर चली गई। उसने कहा, ओ प्रभु, मैं कितनी धन्यवादित हूँ कि मैं इससे बाहर आ गई, क्योंकि उसी रास्ते पर तब बहुत तेजी से दूसरी कारें भी आ रही हैं। तो वो सड़क के पार होकर और फिर वो वहीं पर रुक गई। मैं सोचता हूँ कुछ तो वो एक कॉफी या कुछ तो और लेने के लिए वहाँ रुक गई, और बस उसी पल, इससे पहले कि वो उस कार से बाहर निकलती, एक और कार ने सीधे उसके पीछे से आकर ठोकर मारा। उसके पीछे से एक और ने ठोकर मारा और वहाँ वे सारे ढेर होते गए। लेकिन उसने कहा कि वो थोड़ा हिल गई, लेकिन बुरा नहीं हुआ, लेकिन वो प्रभु का धन्यवाद देना चाहती थी और फोन करके और कलीसिया को बताना चाहती है कि प्रभु का धन्यवाद हो कि उसे चोट नहीं लगी या कुछ भी नहीं हुआ, और कलीसिया से कहा निरंतर प्रार्थना करें कि वो घर पहुंच जाए। लेकिन वो एक नई ड्राइवर थी, उसे हाल ही में उसका लाइसेंस मिला था, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये हमेशा ही प्रभु की उन चेतावनियों को लेने के लिए भुगतान करना होता है। कहा, ठीक है। उसने कहा, मैं एक दिन के काम को खो दूंगी। एक दिन का काम क्या है, उससे अधिक दाम तो कार के पीछे को ठीक करने के लिए लग गया। देखो, तो यह सबसे अच्छा है कि आपको बनाए प्रभु के साथ बने रहे। क्या यह सही नहीं है? यदि वो हमें कुछ भी बताता है तो हमारे लिए अच्छा है कि उस बात के साथ बने रहें, क्योंकि वो हमेशा ही सही होता है। क्या वो नहीं होता है? हमेशा ही सही होता है। अब ओह, ये क्या ही अद्भुत सप्ताह रहा है। मैं अब नहीं जानता कि इस अद्भुत सप्ताह के लिए खुद को परमेश्वर और आप लोगों के सामने कैसे व्यक्त करूं। ये 8 दिन सबसे खुशहाल दिन रहे हैं जो मैंने अपने जीवन में कभी प्रचार किया है। ये सच है, मैंने प्रभु और उसकी कोमल दया के विषय बहुत कुछ सीखा है, और वो सब जो उसने हमारे लिए किया है, और उसकी आत्मा को कलीसिया में वापस काम करते हुए देखना, और मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि दान फिर से कलीसिया में संचालित होना आरंभ हो गए हैं। देखा, अब एक बार वहाँ जब आप दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तो असल में अंदर आ जाएगा, बस इसे दूषित करेगा। आप जानते हैं, वे तब कुछ भी करना आरंभ कर देंगे, और जब आप उन दानों का आदर नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। समझे, ये सही है, आपको उन्हें सही करना होगा। और जिस तरह से हम चाहते हैं, ये बस जब व्यवस्था में होता है, जिस तरह से वे अन्य जुबान में बोलते हैं, न ही ऐसे ही एक वचन का हवाला देना, बल्कि एक ऐसी चीज के बारे में बताना जो बात स्थान लेने जा रही है, और यदि आप बस उसी के साथ वास्तव में आदर बनाए रखते हैं, तो यह आरंभ हो। यदि कोई कलीसिया में व्यवस्था से बाहर निकलता है, तो पवित्र आत्मा इसे सीधे सीधे बता देगा और उन्हें बताएगा कि यह कौन है, और वहाँ वे फटकार को महसूस करेंगे और वेदी पर जाएंगे। यही उन दानों के होने का कारण है। और यहाँ हमारे पास्टर को देखें, भाई नेविल, वो थोड़े लज्जाशील किस्म के थे। वह एक प्रकार से पीछे की ओर हटने वाले व्यक्ति हैं, और मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसा दिखाई देता था कि वे इसे कभी नहीं संभाल पाएंगे। जब वे पेंटिकॉस्ट में आए, लेकिन उन्हें ऐसे खड़े होकर और अन्य भाषा का अनुवाद करते देखना और भविष्यवाणी करना, मैं आपको बताता हूँ, वे लंबा रास्ता तय करके आए हैं। सही है, आइए हम अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। और देखो, दान कलीसिया में आना आरंभ हुए हैं, और एक और छोटा सा यहाँ नम्र भाई है, वो यहाँ पर है, वो है यही कहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो है, वो हमेशा ही रहते हैं। वो एक बहुत ही नम्र छोटा व्यक्ति है जो यहाँ कलीसिया में खजांचियों में से एक हुआ करते थे। भाई हिगन बॉथम एक बहुमूल्य धर्मी व्यक्ति हैं। और यह देखकर कि उन्होंने अन्य भाषा में बोलने का दान पाया है, यहाँ तक किसने कभी सोचा होगा कि भाई हिगन बॉथम ने ऐसा किया होगा। एक लज्जाशील किस्म के पीछे की ओर हटने वाले छोटे से व्यक्ति नहीं चाहते कहीं भी उन्हें कोई भी जाने, किसी के द्वारा भी जाने, पीछे बने रहना चाहते हैं। लेकिन देखो, परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को इस तरह से उठा सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। देखो, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता है पहले स्थान में। यदि वो ऐसा करना चाहते थे, तो वो रूढ़िवादी व्यक्ति होकर बाहर आ सकते थे। लेकिन जब बाहर आते हैं जहाँ वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि परमेश्वर इस प्रकार से उसका उपयोग कर सकता है। जूनी यहाँ है, वो मेरे सामने के खम्बे के पीछे है। मैं इसे कहूँगा, मैंने कई लोगों को अन्य भाषा में बोलते सुना है, और मैं सोचता हूँ कि यह सब परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि आप बिना किसी अर्थ के इसके कोई भाषा को नहीं बोल सकते हैं, जिसका कुछ तो किसी के लिए तो अर्थ होता है। कहीं तो आप जानते हैं, बाइबल कहती है उनमें से कोई भी भाषा बिना अर्थ की न होगी। इसका मतलब है कि इसके कुछ तो अर्थ के बिना कोई भाषा नहीं है। आप किसी भी प्रकार की बोली को नहीं बोल सकते हैं जब तक इसका कुछ अर्थ न हो। मैं अक्सर सोचता था कि यह कैसे होगा, जब तक मैं अफ्रीका जाकर और उन सारी बोलियों को ना सुन लिया, और मैंने जान लिया कि यह तब किसी की तो आवाज थी, कभी कभी यह एक दूत की आवाज होती है और इत्यादि। लेकिन जूनी जैक्सन, जो लज्जाशील किस्म के पीछे रहने वाले थोड़े संकोचशील, जो वहाँ देश के एक मेथोडिस्ट कलीसिया के प्रचारक हैं, जो वहाँ दूर दूर एलिजाबेथ इंडियाना के आसपास दूर बैकवुड में हैं, शांत, कुछ नहीं बोलेंगे, एक तरह से पीछे रहने वाले, वे ऐसे दिखाई देते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे हिलाकर कहूँ, कुछ तो कहो जूनी, देखो बस वहाँ शांत बैठकर मुझे इस तरह देखते रहते हो। हम वहाँ जाकर जंगल में कटे हुए पेड़ों पर बैठते, और वो वहाँ बैठकर कहता, ठीक है, मैं सोचता हूँ यह सब ठीक बात है। मैं कहता, ओ जूनी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए कहने दो, तुम देखो तुम मेरे लिए बहुत ही धीमे हो। देखो, और परमेश्वर ने उसे एक अन्य जुबान में बोलने का दान दिया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी स्पष्ट भाषा नहीं सुनी। देखा, उसे कलीसिया में देखें। देखो, वो छोटी सी महिला जो आज सुबह बोल रही थी, जो उस दूसरी महिला को नहीं जानती थी, और वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और यह जो एक है उस भाषा की आवाज जिसे बोला गया था, और जब इसका अनुवाद किया गया था, उसी उच्चारण में स्वर विराम चिन्ह बिल्कुल वैसे ही वापस आ रहा था, और कलीसिया के लिए संदेश एकदम सिद्ध था। देखो यह किस तरह से है। अब हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अब अपनी छाती को चौड़ा मत करो, यदि आप करते हैं तो आप अपने आप को सपाट कर देंगे और शैतान आपको पकड़ लेगा। बस नम्र बने रहें, कहें, ओ प्रभु, मुझे छिपाए रखें, मुझे कभी भी समय से पहले ऊपर आने नहीं देना। वह आपको कभी भी व्यवस्था से बाहर निकलने नहीं देगा। यदि आप करते हैं, कभी कभी इससे फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप करते हैं, इसलिए यहाँ पास्टर आपको बताएगा। देखें, उन दानों का कार्यबंध नहीं होना है जब आप प्रचार कर रहे होते हैं। आम तौर पर यदि वे दान कलीसिया में भला काम करते हैं, तो हमारे पास दूसरी सभा होने से पहले दानों को कार्य करने के लिए एक लंबा समय मिलेगा। प्रभु को वहाँ तुम्हारे साथ काम करने दें, आप देखना, क्योंकि तब इस प्रचार के भाग पर वो इसे रुकावट नहीं डालेगा। अब जब हम सभा में होते हैं तो कभी कभी आपको कुछ देर के लिए थोड़ा शांत रहना पड़ता है, लेकिन यदि परमेश्वर के देने के लिए कोई संदेश होता है तो कहीं न कहीं वो इसे आगे लेकर आएगा। देखो, बस उसे वैसे ही रहने दे, लेकिन इसे बाइबल की शिक्षा के अनुसार कीजिए। और भाई नेविल शायद उन चीजों पर शिक्षा देंगे जिसे हम इसे करने का प्रयास करेंगे। मैं साथ ही उनकी सहायता करने की कोशिश करूंगा जितना हम कर सकते हैं। हम दोनों एक साथ इसे आगे लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाना है। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं मेरे पॉलिश के भाई? ये अच्छी बात है। ओ, किस तरह से प्रभु ने उसे आशीषित किया। 8 वर्ष पहले उसे बताया कि कुछ तो बात होने वाली थी। वह पूरी तरह से उलझन में था। वो एक सच्चा सख्त त्रिएकता को मानने वाला है। और प्रभु ने एक दिन कहा, एक मनुष्य आ रहा है, उसके काले बाल और बुरी आंखें हैं, भारी भरकम शरीर है, उससे मुंह मत मोड़ना, मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मैंने एक वचन को निकाला जहाँ पर वह उलझन में था। मैंने एक कागज के टुकड़े पर लिख दिया और उसे वहाँ पर रख दिया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो आया। मेरी पत्नी ने कहा, आपसे मिलने के लिए वहाँ बाहर एक व्यक्ति आया है। मैंने कहा, यह वही है, उसे अंदर लेकर आना। और उसने मुझे बताया जो उससे कहा गया था, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नीचे था, किस तरह से उसने हमेशा ही विश्वास किया था और संदेश और इत्यादि को थामे रहा। उसके लोगों के बीच आलोचना किए जाने के बावजूद वह ठीक इसके साथ बना रहा। कहा, सभा में कुछ समय पहले जो मैंने उससे बात की और उसके नाम को बताया और मैंने किस तरह यहाँ तक उसके नाम को लिया, मैं नहीं जानता। उसने कहा कि मैंने इसका उच्चारण किया था या कुछ तो या ऐसे ही कुछ। और उस सभा में कहा, वो उसके बाहों में बालक को लिए हुए था कि उसका चेहरा दानों से भरा हुआ था। और कहा कि छोटा सा बालक पूरी तरह से सामान्य हो गया, बस पूरा साफ हो गया। और किस तरह से प्रभु, और मैंने कहा, खैर, अब वो चीज जिसकी तुम्हें आवश्यकता है वो है कलीसिया में जाकर और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। मैं उससे कुछ समय पहले पहाड़ की चोटी पर मिला, क्योंकि वह नीचे उतरा, उसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। अब वह पूरी तरह से संतुष्ट है, अच्छा महसूस कर रहा है घर लौटते हुए। मुझे आशा है उसे पोलैंड में इन चीजों में से एक दिन मेरे लिए अनुवाद को करना है, और जर्मनी में और वहाँ पीछे उन स्थानों पर। प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई। हमारा प्रभु बहुत सारे महान कामों को करता है, बस उसकी दया को देखें, किस तरह से पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण वह अपने प्रिय बच्चों का नेतृत्व कर रहा है। वे एक साथ आ रहे हैं, भार खींचते हुए, हिलाते हुए। बहुत कुछ कहा जाना है। अब मत भूलना, अगले रविवार की रात को, हमारे प्रभु की इच्छा हुई तो अगले रविवार की रात हमारे पास, मेरा मतलब अगले रविवार की सुबह एक चंगाई की सभा होगी। मेरा जो इस पर बताने का कारण है, हो सकता है उस वक्त यदि रविवार की सुबह को बहुत सारे लोग होते हैं तो मुझे रविवार की रात को वापस आना होगा, आप देखना। लेकिन यदि मैं रविवार की सुबह को सबके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ तो ठीक है, अच्छी बात है। बुधवार की रात को एक मध्य सप्ताह की प्रार्थना सभा है। अब आप लोगों के लिए जो यहाँ आसपास घरों में रहते हैं, आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर प्रार्थना की सभा करें। इससे चूकना मत, इसके साथ बने रहना। देखो और प्रार्थना करो, परमेश्वर के नजदीक आने की इच्छा रखें। कट्टरवादी को कभी भी अपने बीच मत आने दो, रखें, वहाँ बहुत ही ज्यादा वास्तविकता है एक झूठ स्वीकार करने के लिए। देखो, गलत दिशा में मत जाना, सही दिशा में बने रहें। मैंने एक परिचित आमीन को सुना तब, जिसे वर्षों से सुनता आया हूँ, वो भाई रसेल क्रिच है। वे मुझे बता रहे हैं कि पेटी एक रात को वहाँ पीछे अन्य जुबान में बोल रही थी। पेटी, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम यहाँ पर हो प्रिय? जी हाँ श्रीमान, मैं यहाँ तक उसे पहचानूंगा भी नहीं यदि मैंने उसे देख लिया होता था तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी बाहों में उस बच्ची को लिया था और ठीक यहीं पर उसे परमेश्वर को समर्पित किया है। और वो एक नौजवान महिला है। मेड़ा ने कहा वो एक युवा, सुंदर युवा किशोर अवस्था की लड़की है। उसके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो बोल रही थी, रसेल आप तो एक धनी व्यक्ति हैं। जी हाँ आप हैं। बहन क्रिच कहाँ पर हैं? मैंने उसे नहीं देखा है, क्या वो यहीं कहीं पर है? वहाँ पर पीछे। ओ बहन क्रिच, मैं कितना धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने आपको ऐसे एक बच्चों को दिया है, जो क्योंकि आपको ये एहसास नहीं होगा कि कितना धन्यवादित हूँ। जिस उम्र में किशोर अवस्था उम्र की लड़कियाँ हास्य व्यंग करती हैं और हंसती रहती हैं और ऐसे ही रहती हैं, आप जानते हैं, इन लोगों की मूर्खतापूर्वक बातों को करने का एक झुंड, उनके बदक की तरह बाल कटे होते हैं और इत्यादि और इसी तरह से। और यहाँ ये छोटी बच्ची पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ यहाँ अन्य जुबान में बोल रही है। ओ प्रभु, कितने पुरुष आज रात जो पेंटिकॉस्टल प्रचारक हैं, जो अपने संपूर्ण जीवन को दे देते यदि वे उनकी किशोर अवस्था की पुत्री को देख सकते, जो कि रॉक एंड रोल पार्टी के लिए भार होती है, ये करती है। केवल इसको महत्व दे भाई, मैं जानता हूँ कि आप वहाँ अंतर्राज्यीय स्तर पर क्या कर रहे हैं। मैंने उसी काम को किया है, बहुत से परिश्रम के दिन निकाल कर काम किए हैं, लेकिन भाई उन बच्चों को बड़ा करने के लिए। लेकिन याद रखें, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो इनाम को देता है। जी हाँ, सचमुच मैं प्रतिफल को दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे बेटी। प्रिय, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, यदि मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं सोचता हूँ, लेकिन कभी भी उस सीधे रास्ते को मत छोड़ना। प्रिय, शैतान को कभी भी तुम पर कुछ भी डालने मत देना, जैसे एक अच्छा सुनहरा सेब, क्योंकि यह एक नींबू हो जाएगा। देखो, उन बातों को छोड़ दो और इसे ऐसे ही रहने दो। अपनी आँखों को मसीह पर रखो, सीधे क्रूस पर रखो और ठीक आगे बढ़ते रहो, क्योंकि समय नजदीक है, समझे। तो उत्तेजना के शब्दों की बहुत सारी बातें हैं जो मैं बस बोल सकता हूँ, जो परमेश्वर की आशीष हैं। मैं बहुत से लोगों से मिल नहीं पाया था, और इस पूरे हफ्ते में मैंने 50 से अधिक लोगों के लिए भी प्रार्थना नहीं की है। मैं सोचता हूँ, और अंदर और बाहर और आपात स्थितियाँ और जो कुछ भी बात होती आई है और इत्यादि, लेकिन मैं अध्ययन करने में व्यस्त रहा हूँ। लेकिन अब अगले रविवार हम लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और प्रभु से नीचे आने के लिए मांगेंगे, और हमें महान सामर्थ को दे, और वो अगले रविवार सुबह खुद को हम पर प्रकट करे, प्रभु की इच्छा हुई तो। ओ, मैं इस कलीसिया युग पर आरंभ करने से अब घृणा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यह उनमें से अंतिम युग है, और अब इसमें यह सात कलीसिया युग की समाप्ति करने जा रहा है। क्या आपने इसका आनंद लिया? अब याद रखें, मैं इसे अंत में कहता हूँ, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, हो सकता है ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो आप मुझसे दृढ़ता से असहमत होंगे, लेकिन इसे मेरे विरोध में न रखें। देखो, कुछ भी हो, केवल आप मुझसे प्रेम करें, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या करते हैं या आप क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल आपके जैसा ही सोचूंगा। यदि कुछ भी इसके अलावा, देखो, यदि कुछ भी है तो मैं आपसे अधिक सोचता, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ये जानता है, वहाँ एक मनुष्य नहीं है जो यीशु मसीह के नाम को बता सकता है, लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ, समझे। और मैं कभी भी कोई कड़वाहट या अपक्षपात को नहीं चाहता। हालांकि हम दृढ़ता से असहमत हो सकते हैं, यदि हम एक मेज पर बैठे होते थे और एक जन एक प्रकार के पकवान को खा रहा होता था और एक जन दूसरे प्रकार के पकवान को, तो यहाँ भी ठीक उसी तरह से ही होगा। देखो, जब ये एक दूसरे के साथ संगति की बात आती है तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, और यदि हम परमेश्वर में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम ऐसा नहीं करते। बस भूलना मत, ये मत भूलो कि सारे दानों में सबसे बड़ा दान प्रेम है। भले ही मैं मनुष्य और सर्वदूतों की बोलियां बोलूं, मेरी देह को एक बलिदान के रूप में जलाने के लिए दे दूं, सारे ज्ञान को समझूं और इत्यादि, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो लेकिन जब वो जो सिद्ध है, जो कि प्रेम है, यदि सारे आत्मिक दान प्रेम के साथ एक साथ मिश्रित नहीं होते हैं, ये इसे संभाल नहीं पाएगा। कोई भी अन्य मिश्रण तितर बितर हो जाएगा, लेकिन प्रेम हमेशा के लिए बना रहता है। देखो, यह पहला कुरिन्थियों 13 है। अब आज रात इस बड़े कलीसिया युग में प्रवेश करते हुए, ओ प्रभु, अब हम आज रात लगभग 8:45 बजे तक जा सकते हैं, और अब मुझे निश्चित रूप से खेद है कि हमारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है, लेकिन हर किसी को बैठने के लिए, मेरा मतलब हर किसी के बैठने की सीट, लेकिन हमारे पास ये अभी नहीं है, और हो सकता है किसी दिन हमारे पास होगी। लेकिन अब मैं आपसे एक समर्थन को करने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं जहाँ बना हुआ हूँ आप उसे देखते हैं, और आप जानते हैं जिसकी किसी दिन मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखें, और समय बहुत ही नजदीक है। देखा, अब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, हमेशा ही मेरे लिए प्रार्थना करें। और याद रखना, मैं ईमानदार रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ कि कैसे ईमानदार रहना है। देखो, और मुझे एहसास है कि मैं अब कोई बालक नहीं हूँ, मैं 51 वर्ष का हूँ, और मैं तब तक नहीं जा सकता हूँ जब तक कि परमेश्वर मुझे नहीं बुलाता है, और मैं उसी तरह से जाऊँगा जैसे वो चाहता है कि मैं जाऊँ, और ये ऐसा ही होगा, समझे। लेकिन मुझे ईमानदार बने रहना अवश्य है और सच्चाई को बताना है बेपरवाह होकर, इसलिए मैं जानता हूँ कि कभी कभी यह अकेला चलना होता है, लेकिन जब तक वो आपके साथ होता है इससे क्या फर्क पड़ता है, समझे। अब इससे पहले कि हम इस बड़े कलीसिया युग में प्रवेश करें, मैं सोचता हूँ कि क्या हम प्रार्थना के लिए बस कुछ क्षण के लिए फिर से अब खड़े हो सकते हैं। इस तरह से आपको जोर लगेगा और अच्छा महसूस होगा। समापन की सभा पर वहाँ यहाँ पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सामने याद करवाना चाहेंगे? केवल अपने हाथों को परमेश्वर की ओर ऊपर उठाएं। मुझे याद करना है प्रभु, युग के अंत पर जब जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो मुझे याद करना। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे पास हमारे आभार को व्यक्त करने के लिए इतनी जुबानें नहीं है उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो इस पिछले सप्ताह हमारे बीच में रही है, उन चीजों के लिए जो हमने आपको जाना है। आपने हमें अपने आप को समय में से होते हुए किस तरह से प्रकट किया है और आपने अपने वचन को हमारे लिए कितना स्पष्ट बना दिया है। हम किस तरह से आप पर रुके रहे और किस तरह से हमने अपने प्रेम को व्यक्त करने की कोशिश की है, और ऐसा करने में हम विफल हो जाएंगे प्रभु, क्योंकि नाशवान जुबान ऐसा नहीं कर सकती है। उसके लिए यहाँ तक कि हमें बचाने के लिए, और आप यहाँ तक कि हमें आपके प्रति एक भूख को देने के लिए, क्योंकि ये वचन में लिखा है, धन्य है वे जो भूखे हैं। केवल भूखा होना ही यह एक आशीष है। धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। तब आपने उस महान कथन को दिया, क्योंकि वे भर दिए जाएंगे। अब हम यह विश्वास करते हैं प्रभु, हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करेंगे। और जैसा कि हम आज रात को प्रवेश करते हैं इस अंतिम कलीसिया युग में जो कि लौदिकिया है, जब हमने वचनों को देखा है और इतिहास हर समय पर बिल्कुल सही सही घटित हुआ है, सो पिता, हम यहाँ पर आपकी महान भविष्यवाणी के कथन को जानते हैं जो इस अंतिम युग की है। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा अन्य छह युगों में होता रहा है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज रात पवित्र आत्मा को हमारे लिए आने देंगे अब, और हमें आशीष देना जैसे हम आगे आप पर रुके हुए हैं। यीशु के नाम में आमीन। बैठ जाए। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो किताब जितना जल्द हम कर सकते हैं, भाई लियो इसे चुंबकीय टेप में से ले रहे हैं, ताकि उस संक्षेप लेख में जाकर वहाँ से लेकर टाइप करके उसके बाद किताब में लें। और वैसे ही रोजेला के पास बहुत ही जल्द उसकी किताब होगी, एक बचाया गया शराबी। आप सभी को उसकी कहानी याद होगी कि किस तरह पवित्र आत्मा ने उसे सभा में बताया और उसे चार सबसे बड़े शराब चुराने वाली संस्थाओं के द्वारा उसे छोड़ दिया गया था और उन अस्पतालों से मुंह मोड़ लिया गया था जो शिकागो में थे। और प्रभु यीशु ने एक ही पल में इसे निकालकर उसमें से पूरी तरह से दूर कर दिया। वो बस जेल से लेकर अन्य स्थानों पर जाती रहती है, लोगों को बताती है कि परमेश्वर किस तरह से छुटकारा दे सकता है, शराबियों और इत्यादि से बात करती है। उसने अपनी गवाही के द्वारा मसीह के लिए बहुत से लोगों को जीत लिया। अब पहली कलीसिया का युग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या था? एफिसियस, दूसरा स्मुर्णा, तीसरा पिरगमुन, चौथा थुआतीरा, पांचवा सर्दिस, छठा फिलाडेल्फिया, सातवा लौदिकिया। पहला एडी 55 और 170 के बीच था। एफिसियस, स्मुर्णा 170 से लेकर 312, पिरगमुन 312 से लेकर 606, थुआतीरा 606 से 1520, सर्दिस 1520 से 1750, फिलाडेल्फिया 1750 से लेकर 1906। अब इसने लौदिकिया युग को आरंभ किया एक ही समय पर, एक के ऊपर एक, और कल रात हम जरा सा उसके ऊपर आ गए। अब हम आज रात को लौदिकिया की समाप्ति को ले रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि लौदिकिया कलीसिया का आरंभ एडी 1906 में हुआ था। मैं अनुमान लगाता हूँ, अब याद रखें, अनुमान लगाता हूँ, विशेष रूप से आप जो टेप पर सुन रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ऐसा होगा, लेकिन यह अनुमान लगाता हूँ कि यह 1977 तक खत्म हो जाएगा, कि कलीसिया पूरी तरह से स्व धर्म त्याग में चली जाएगी और वह परमेश्वर के मुख से बेदखल कर दी जाएगी, और दूसरा आगमन या मसीह का रैप्चर किसी भी समय आ सकता है। अब मैं उससे एक वर्ष चूक सकता हूँ, मैं इससे 20 वर्ष चूक सकता हूँ, मैं इससे 100 वर्ष चूक सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि यह कहाँ पर, लेकिन मैं बस यह अनुमान लगा रहा हूँ जो एक दर्शन के अनुसार उसने मुझे बताया, और समय को ले रहा हूँ जिस तरह से यह प्रगति कर रहा है, मैं कहता हूं कि यह 33 और 77 के बीच कभी भी होगा। कम से कम ये बड़ा राष्ट्र एक युद्ध को छेड़ने जा रहा है जो इसे टुकड़े टुकड़े करके उड़ा देगा। देखो, अब यह बहुत ही नजदीक है, यह बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। क्या हर कोई समझ रहा है? कहें आमीन। देखा, लेकिन प्रभु ने मुझे 1933 में बड़ी शक्तिशाली महिला का दर्शन दिखाया। यह पन्नों पर है कि कैसे रूजवेल्ट वो कारण था, उसने संसार को युद्ध में ले जाने में मदद की, कैसे मुसोलिनी इथियोपिया पर अपना पहला आक्रमण करेगा और वैसे ले लेगा, लेकिन उसका एक अपमानजनक अंत होगा, और कैसे यह उसके बाद ये तीन बात, नाजीवाद, फासिस्टवाद और साम्यवाद, ये सभी साम्यवाद में सिमट जाएंगे। और यहाँ कितने लोगों को मेरी बात याद है? बस क्या आप खड़े होकर और फिर से ये बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ, रूस की ओर देखो, रूस की ओर देखो जो उत्तर का राजा है, देखो रूस जो उत्तर का राजा है, देखो रूस जो उत्तर का राजा है। कितने लोगों को मुझे तब इतना कहते हुए सुना है? बस हाथों को हिलाएं, फिर से हिलाएं। जो पुराने समय के लोग हैं, आप देखो, पहले जो कलीसिया के शुरुआती सदस्य में थे, केवल वहाँ खड़े हो जाएं और ऐसे हाथों को बार बार हिलाएं, हिलाते रहें। रूस को देखो जो उत्तर का राजा है, देखो वो क्या करेगा, वे सारे वाद रूस में ढेर हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कि यह देश अंत में जर्मनी के साथ युद्ध करेगा, और जर्मनी एक ठोस दीवार को बनाएगा, और वो मैगिनॉट रेखा थी। 11 वर्ष पहले ही इसने इसे तब ही बनाना आरंभ कर दिया था जिससे कि इसे बनाए 11 वर्ष पहले। और मैंने कहा अमेरिकन उस रेखा पर बहुत ही ज्यादा हार को लेंगे। इसमें से कुछ भाई या उस रेखा पर थे, भाई रॉय रॉबर्टसन, और वे उनसे पूछे कि क्या हुआ था, निश्चय ही वे हारे। तो ठीक है, लेकिन अंत में मैंने कहा हम जय को पाएंगे और हम वो एक विजेता होंगे हमारे और जर्मनी के बीच युद्ध में। अब मैंने कहा तब उस समय के बाद कि विज्ञान वास्तव में प्रगति करेगा। उन्होंने प्रगति की, उन्होंने परमाणु बम और सब कुछ बनाया। मैंने कहा उनकी प्रगति के दौरान वे एक कार बराबर एक अंडे की तरह आकार लेना आरंभ करेगी। और आपको 1933 की बड़ी पुरानी कार की छत याद है, इस तरह से पीछे नीचे होता था, इसके पिछले हिस्से पर अतिरिक्त टायर, देखो अब यह किस तरह से है, देखो सुडोल, देखिए एक अंडे की तरह। और मैंने कहा अंत में वे एक कार का आविष्कार करेंगे जिसमें उन्हें इसमें चालक चक्र नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने एक परिवार को वहाँ जाते देखा, इसे कहते हैं रोड, जिसमें उस कार के ऊपर की ओर एक कांच रहता है, शानदार बड़ी बड़ी दिखने वाली सड़कें और बढ़िया सी कार, और वे बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे, और कार अपने आप चल रही थी, और वो कार आड़े तिरछे और हर एक रास्ते पर सही सही घूम रही थी, और उन्हें ठीक अभी वो कार मिल गई है। उस कार का पहले से ही आविष्कार हो चुका है, उनके पास वो कार है। और मैंने तब कहा था, ओह उस दिन विज्ञान किस तरह से प्रगति कर लेगा। मैंने कहा वे महिलाओं को अनुमति देंगे और महिलाओं को वोट देने की अनुमति दे रहे हैं, और मतदान करने के द्वारा वे इन दिनों में से एक दिन गलत व्यक्ति का चुनाव करेंगे, और आपने पिछले चुनाव में ऐसा किया। यह महिला के वोट थे जिसने कैनेडी को चुना। हम जानते हैं कि धोखे की मशीनों के बीच और वो चीजें तय हुई। देखे कि FBI ने इन बातों को उजागर किया, और कोई भी कैसे वे इसके बारे में कुछ भी कदम को क्यों नहीं उठाते, कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ, डर लगता है कि कोई अपनी नौकरी को गवा बैठेगा। आप देखते हैं, यह तो बस राजनीति का एक झुंड है, भीतर तक सड़ा हुआ है। ऐसा ही है, निश्चय ही वहाँ कोई नहीं, नहीं नहीं है, मुझे क्षमा करें, इस राष्ट्र में कोई उद्धार नहीं है, कोई भी राष्ट्र में कोई उद्धार नहीं है, उद्धार यीशु मसीह में है और केवल उसी में है। ये सही है। अब मैं अमेरिका के लिए आभारी हूँ, मैं बल्कि संसार के किसी भी स्थान से यहाँ रहना चाहूँगा, क्योंकि कनाडा के अलावा कनाडा और संयुक्त राज्य जुड़वा है, हम ये जानते हैं, पड़ोसी राष्ट्र बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं बल्कि संसार के किसी भी स्थान से यहाँ पर रहना चाहूँगा जो मैं जानता हूँ, क्योंकि यह मेरा घर है। मुझे खुशी है कि मैं एक अमेरिकी हूं और इसके लिए धन्यवादित हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इसे निश्चित रूप से एक प्रतिकूल बेदारी की आवश्यकता है, यह निश्चित रूप से करता है और इसे नहीं प्राप्त करेगा। जी नहीं श्रीमान, यह फिर कभी ऊपर नहीं आएगा, नहीं श्रीमान, यह खत्म हो चुका है। आपको याद होगा लगभग 5 वर्ष पहले शिकागो में यह टेप पर है, आपने इसे पकड़ा जीन? मैंने कहा था वे या तो इस वर्ष इसे स्वीकार करेंगे या वे लगातार नीचे गिरते जाएंगे, और वे इसे कर चुके हैं। देखो, वे ऐसा तब तक करेंगे जब तक वो अंत में पहुंच नहीं जाते। लेकिन एक शक्तिशाली स्त्री होगी, अब याद रखना, यह भी टेप पर है, एक शक्तिशाली स्त्री, बड़ी महिला, वो या तो राष्ट्रपति बनेगी या यह कैथोलिक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाली एक स्त्री होगी, जो मैं सोचता हूँ ऐसा है, किसी दिन यहाँ अधिकार में ले लेगी और वो इस देश पर शासन करेगी। यह राष्ट्र एक स्त्री राष्ट्र है। झंडे को एक स्त्री के द्वारा बनाया गया था। यह संख्या 13 है। यह आरंभ हुआ 13 तारे, 13 धारियां, 13 उपनगर, सब कुछ 13 13 13, ठीक आगे तक उसके चांदी के डॉलर पर अब 13 तारे हैं, सब कुछ एक 13 है। यह संख्या 13 है और प्रकाशित वाक्य के 13वां अध्याय में दिखाई देता है, पूरी तरह से 13, सारी चीजें स्त्री 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 ठीक आगे तक, और उसने सारे कार्यस्थल पर अधिकार कर लिया है, उसने हॉलीवुड पर अधिकार कर लिया, उसने राष्ट्रों पर अधिकार कर लिया, उसने सारे कार्यस्थल पर अधिकार कर लिया है, वहाँ जो कुछ भी है उस पर अधिकार कर लिया है, पुरुष के साथ बराबरी का अधिकार, पुरुष के साथ वोट, एक पुरुष की तरह गाली बकती है, एक पुरुष की तरह पीती है, और कुछ भी है वह बस कैथोलिक कलीसिया का वो लुभाने के लिए चारा डालते हैं। एक स्त्री की आराधना करने के लिए वे पहले से ही किसी भी तरह एक स्त्री की आराधना कर रहे हैं। वह सबसे अच्छी है, एक अनैतिक महिला, वो सबसे अच्छा लुभाने के लिए चारा है जो शैतान के पास हमेशा से रहा था। वह अब तक के सारे शराबखानों से भी सबसे बदतर थी। वह देश के सारे शराबखानों से भी ज्यादा प्राणों को नरक में भेज सकती है। ये सही बात है। एक भली स्त्री एक पुरुष के मुकुट में का एक रत्न है, धरती पर के सबसे बुद्धिमान मनुष्य ने कहा। एक पुरुष को एक भली स्त्री का आदर करना चाहिए। देखो, लेकिन एक बुरा पुरुष उसके लहू में पानी है और उसका लहू उसका जीवन है। आप पुरुष लोग जिनकी भली पत्नियां हैं, आप नहीं जानते कि आपको एक भली पत्नी के लिए किस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यदि परमेश्वर एक पुरुष को एक सहायता के लिए कुछ सबसे अच्छा दे सकता है तो उसने ऐसा किया है। लेकिन एक स्त्री सबसे अच्छी सहायक है जिसे परमेश्वर एक पुरुष को दे सकता है। लेकिन जब वे मुड़ वही एक अदन के बगीचे में थी जिसे शैतान ने अपने हथियार के लिए चुना था, उसने पुरुष को नहीं लिया, उसने स्त्री को लिया। वह अभिलाषा को देने के लिए आदम के पास क्यों नहीं गया? वह स्त्री के पास आकर और उसे देता है। देखो, क्योंकि वही वो एक थी जिसे उसने चुना था। परमेश्वर ने पुरुष को लिया और शैतान ने स्त्री को लिया। और सीधे आगे की ओर देखें, और अंत में जब बाबुल को आरंभ में स्थापित किया गया था, इस लॉक के टू बेबीलोन एक स्त्री, जब यह आगे युग के अंदर आता है, अब यह अन्य जाति युग को समाप्त कर रहा है। बाबुल ने इसी तरह आरंभ किया और कलीसिया में एक स्त्री की आराधना मरियम के साथ समाप्त होती है। क्या ही दिन है जिसमें हम जी रहे हैं। अब लौदिकिया, वो लौदिकिया युग, इस शब्द का अर्थ है गुनगुना। यह धन संपत्ति से बढ़ चुका है और सोचता है कि उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुच्छ, अंधा, अभागा और नग्न है। क्या ही परिस्थिति है उनका। जो इनाम है जो इस कलीसिया युग में जय को पाते हैं, वो है प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठना। अब वो तारा या दूत या इस कलीसिया युग का दूत अज्ञात है। अब पहली कलीसिया युग का दूत वो कौन था? पौलुस, इफिसियस, स्मुर्ना, इरेनियस, पिरगमुन, संत मार्टिन, थुआतीरा, कोलंबा, सर्दिस, लूथर, फिलाडेल्फिया, वेस्ली, और इस लौदिकियन में हम अभी तक नहीं जानते हैं, और शायद यह तब तक नहीं जानेंगे जब तक कि यह पूरी तरह से पूरा न हो जाए। लेकिन मैं केवल अपने कथन को देना चाहूँगा कि यह दूत क्या होगा, हम किसके लिए देख रहे हैं, क्या यह ठीक होगा। ऐसा करने के लिए हमारे पास थोड़ा समय है। मैंने अब कुछ कथन को यहाँ लिखा है जो मैंने सोचा था। इस लौदिकियन कलीसिया का दूत इसे समाप्त करने के लिए अब वो युग के अंत में होगा, उन बाकी की तरह, जैसे कि बाइबल ने कहा वह युग के अंत में होगा। न ही इसके आरंभ में, इसके अंत में, क्योंकि दूत हमेशा ही फटकार लगाने के लिए आता है उन्हें जो उन्होंने किया है उसके लिए। उस लौदिकिया की कलीसिया के दूत के लिए इन बातों को लिख, देखो। इस मुर्ना की कलीसिया के दूत के लिए इन बातों को लिख, देखो। हर एक युग के लिए अंत में दूत होता है, पौलुस युग के अंत में, और ऐसे ही आगे के युग उनके अंत में, एक ही समय पर एक के ऊपर एक युग के अंत में, युग के अंत में। यही है जो इसे एक के ऊपर एक लेकर आता है, एक ही समय पर। देखो, दूत के लिए जो बोल रहा था यहाँ पर, इस एक ही समय पर एक के ऊपर एक आता है दूत के लिए उस युग के अंत में। देखो, सही चीजों को उठाते हुए सीढ़ी पर चढ़ने की तरह एक के ऊपर एक, एक ही समय पर सात कलीसिया के युग। अब यह दूत जो इस दिन में आता है, मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ कुछ लिख कर रखा है, मैं अब इसे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसे युग के आखिरी भाग में जाना चाहिए। और क्योंकि हम उस उज्याले के युग में बहुत ही नजदीक हैं, कि संभावित रूप से वो अब धरती पर है, देखो, हम उसे नहीं जानते। वो एक सामर्थी भविष्यवक्ता होगा जिसे कलीसिया के संसार के द्वारा ठुकराया जाएगा, क्योंकि वे ठीक उनके पापों में बढ़ते जाएंगे और अंत में परमेश्वर के मुख से बाहर उगल दिए जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति के मुख से बाहर। मैं विश्वास करता हूँ कि यह एलिया के जैसा होगा। मैं अपने कारण बताने जा रहा हूँ क्यों। अब आइए, अब कुछ क्षण के लिए यहाँ मलाकी की किताब की ओर जाएं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि यह एलिया की आत्मा के साथ अभिषेक किया जाएगा। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी अनुग्रह की अब टोपी को पहन लें। मलाकी का चौथा अध्याय, अब ध्यान से सुनना जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, और आप अपनी बाइबल में देखें। अब अगले कुछ मिनटों के लिए वास्तविक रूप से सोचें, अब इससे पहले कि हम कलीसिया युग में जाएं, क्योंकि देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और उनके जड़ और डाली का पता तक न चलेगा। वो क्या कह रहा है? वो आने वाले एक दिन के लिए बोल रहा है। क्या आप उस पर सहमत होंगे, उस प्रभु के आगमन के एक दिन के लिए? परंतु तुम्हारे लिए, अब देखो, अब वो वापस इसराइल के लिए बोल रहा है। अब उसने कहा, क्योंकि वो दिन आता है वहाँ पर भस्म हो जाएगा। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ना ही जिस दिन वह धरती को भस्म करेगा, हम उनकी राख पर चलेंगे। वो सहशताब्दी है, अवश्य ही। देखो, याद रखें, मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और न्याय मैंने सारे इसराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा आने से पहले, और यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के, और वो पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। पुराने नियम की समाप्ति। अब यीशु ने कहा, मत्ती 17:10, इसे बोलते हुए सभी यहूदी उस एलिया के आगमन के लिए देख रहे हैं। अब देखिए कि यीशु ने इसके बारे में क्या कहा। मत्ती 17:10, हम नवे पद से आरंभ करेंगे। मत्ती 17:9, जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कहते हुए, किसी मनुष्य से ना कहना, किसी मनुष्य से दर्शन को ना कहना। देखे, किसी को यह ना कहना, आप इसे जानते हैं, लेकिन इसे अपने पास ही रखना। किसी मनुष्य से दर्शन को ना कहना कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से यह न कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? ऐसा क्यों है कि इस मसीह के आने से पहले एलिया का पहले आना अवश्य है? वो धार्मिकता का सूर्य, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? यहाँ आप पहले से ही हैं, और शास्त्रियों ने कहा कि एलिया का पहले आना अवश्य है। अब देखना, और यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा कि एलिया तो आएगा, वो पहले आएगा और सारी बातों को लौटाएगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका और तुमने उसे नहीं पहचाना। देखें, उसने यह नहीं बताया कि वो कौन था, देखो, परंतु जैसा तुमने चाहा वैसा ही उसके साथ किया। उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे योहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। अब योहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो एलिया था जो आने वाला था। अब देखो, मैं फिर से मलाकी 4 के अध्याय में वापस आता हूँ। अब याद रखना, उसने यहाँ कहा था कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। 5वां पद, लेकिन तुम्हारे लिए भेजूंगा उस नबी को, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा जो दिन उस बड़े दिन के आने से पहले और भयानक दिन, वो दिन। हम प्रभु के दिन में क्या पाते हैं? युग के अंत में, यही है जब संसार भस्म होने जा रहा है। आपको याद होगा कि कैसे हमने उस एक सफेद नकली बालों को पहने था, इस बात को लिया था, आप जानते हैं, और उसके स्तन और छाती पर बांधे हुए पटुके के विषय में था, क्या आपको याद है? और हमने बाइबल से साबित किया यह एक सबत का दिन नहीं था और न ही रविवार था, यह प्रभु का दिन था। क्या यह सही है? और यही वो दिन है कि वो एक न्याय के रूप में आता है और एक शाप के साथ पृथ्वी को खत्म करेगा। क्या यह सही है? और यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब एलिया के आगमन की मिलीजुली बातों को देखना। अब यदि और ध्यान दें, सारे वचनों का मिला जुला अर्थ होता है, लेकिन तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और ऐसे बालकों पर प्रकट किया है, वे जो सीखना चाहेंगे। क्या आप इसे विश्वास नहीं करते? अब मलाकी 4 को ठीक यहीं पर पकड़े रहें, और अब आइए बस एक मिनट के लिए मत्ती 2 पर वापस जाएं, ठीक उसके बाद वाले पन्ने पर, मत्ती 2। मैं सोचता हूं कि मेरा मतलब मत्ती 2 के बजाय लूका 2 होना चाहिए। मैंने इसे यहाँ लिख कर रखा है, लेकिन मैं तब कुछ समय पहले कुछ जल्दबाजी कर रहा था और कमरे में पवित्र आत्मा मुझ पर था और मेरे लिए बस मेरा एक बहुत अच्छा समय था, तो मेरा मतलब था 2। आइए देखते हैं कि क्या यही होगा। अब मैं यहाँ बस एक मिनट अध्ययन करूंगा मत्ती 2। ये वो नहीं है जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, क्या यह है? अब बस एक मिनट, मुझे ये अभी मिल जाएगा। मैं यहाँ बस थोड़ा कुछ समय लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखकर सुनिश्चित हो जाएं कि वचन का इसके लिए एक मिला जुला अर्थ है। एना की भक्ति, नासरत की ओर लौटना, फसाव का पर्व, योन्ना की सेवकाई। अब मुझे देखने दे, क्या मेरा अर्थ लूका हो सकता है? मैंने कहीं तो पढ़ा था, और मेरा अर्थ लूका की बजाय मरकुस है। हो सकता है मरकुस रहा हो, लेकिन मैं सोचता हूँ आप इस वचन को पकड़ लें, जिससे कि आप जान जाएंगे कि यह प्रभु का काम है, वह उसे इसी प्रकार से करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस बात के लिए देख रहा हूँ। जहाँ पर मिस्र से बाहर मैंने अपने पुत्र को बुलाया है, कोई तो बारीकी से पढ़ने वाला व्यक्ति है जिसे यह तुरंत मिल सकता है या इसे पा सकता है? मिस्र से बाहर मैंने अपने पुत्र को बुलाया है, मैंने अपने पुत्र को बुलाया है। अब बस एक क्षण, लूका 1:17। धन्यवाद भाई, यह सही है, लूका 1। मरकुस लूका 1:17 बजाय 2 के, मैं 14वां पद को लेना चाहता हूँ। यही वो जगह है जहाँ, यही है भाई, यह बिल्कुल सही है, लूका 1:17। तो ठीक है, अब आप इसे चिन्हित कर सकते हैं। अब ये क्या है? यह प्रभु के आशीष से बाहर है कि यह आशीषित था, और मुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। यह मनुष्य जो आगे आता है उसे अपने जन्म से ही शराब को नहीं पीने के लिए सिखाया जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए जो कि पाप जैसा हो। आपने इसे पकड़ा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इसराइलियों में से बहुत तेरों को उनके प्रभु की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फिर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अब हम समझते हैं कि उसकी भविष्यवाणी की गई थी, और यूहन्ना वो व्यक्ति था। क्या ये सही है? यूहन्ना उस दिन का एलिया था जिसे आना था। अब हम यह भी जानते हैं कि वचन का अर्थ कभी कभी दो बातों से होता है। यह एक बात को कहेगा, जैसे कि वहाँ पर मती में, जहाँ इसने कहा, मिस्र से बाहर मैंने अपने पुत्र को बुलाया है। तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यही है जिसके लिए मैं देख रहा था, मिस्र से बाहर मैंने अपने पुत्र को बुलाया है। और फिर यदि आप वहाँ उस पुत्र के संदर्भ पर जाएंगे, तो वो नहीं, यह होशे में पीछे चला जाता है, जिसका अर्थ यीशु नहीं, उसका पुत्र, ये इसराइल था, उसका पुत्र, मिस्र से बाहर उसने इसराइल को बुलाया। लेकिन इसका कुछ मिला जुला अर्थ था, और ये और अधिक समझ के साथ था जब इसका अर्थ और इसके बारे में बताया गया, क्योंकि यीशु आने वाला था जो कि इसराइल की तुलना में बहुत ज्यादा था जब उसने इसराइल को बाहर बुलाया। तो ठीक है, अब हम यह भी पाते हैं कि उसके पहले आगमन में प्रभु का दिन नहीं था। क्या यह सही है? अब मलाकी की ओर वापस जाएंगे, आइए इसे पहले स्पष्ट करें। प्रभु के दिन पर आ रहे हैं, अब उसके मिले जुले अर्थ को आते हुए देखें, उसका पहला आगमन और उसका दूसरा। क्या आप अपनी आत्मिक सोच के साथ तैयार हैं? 6वां पद, अब वो भेजेगा एलिया से पहले, उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। क्या यह सही है? अब हम समझते हैं कि यह यूहन्ना नहीं था, क्योंकि यह प्रभु का भयानक दिन नहीं था। कैसा था? और उसने ना ही उसने धरती को भस्म किया, तो अवश्य ही इसका अर्थ पूर्वालोकन होना है, या एक और भविष्य में यूहन्ना के आने मतलब एलिया का आगमन है। क्या यह सही है? क्योंकि उसने कहा, मैं एलिया नबी को भेजूंगा, और मैं सारी धरती को भस्म करूंगा, और मैं बस इसे साफ करने जा रहा हूं, और तुम उनकी राख पर चलोगे। यही 6 शताब्दी है, हम ये जानते हैं। परमाणु बम इसे उड़ाकर टुकड़े टुकड़े करने के बाद तब वहाँ होगा, धरती को साफ करेगा, और यहाँ धरती पर एक बड़ा दिन होगा, और कलीसिया 1000 वर्षों के लिए धरती पर यीशु के साथ राज्य करेगी। क्या यह सही है? लेकिन प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन से पहले, जब उसे उड़ा दिया जाएगा, तो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। क्या यह सही है? तो इसका उसके कहने का मतलब यह नहीं था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि प्रभु का भयानक दिन तब नहीं था, ये तो 2000 वर्ष बाद के लिए था। क्या यह सही है? अब अगले पद को देखें, और यदि आप अब वास्तव में आत्मिक होंगे, अब यह एक प्रेम पत्र है, और आपको उन लकीरों के बीच में पढ़ना है, और फिर इसे सही बनाता है। आप जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। याद रखें, मैंने वचन को कैसे कहा, यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि इसे ज्ञानियों से छिपा कर रखा था, उनकी आँखों से बुद्धिमान से छिपा कर रखा था, और इसे बालकों पर प्रकट किया। अब मैंने अक्सर मेरी पत्नी के बारे में उदाहरण देकर स्पष्ट किया है, जब वो मुझे एक पत्र लिखती है, मैं देख सकता हूँ कि वह पत्र पर क्या कह रही है, लेकिन मैं लकीरों के बीच पढ़ता हूँ ये जानने के लिए मेरी पत्नी का क्या अर्थ है। देखो, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ, और मैं उसका स्वभाव जानता हूँ, और आपको परमेश्वर के स्वभाव को जानना होगा और उससे प्रेम करना है, तब वो वचन आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे, वो इसे प्रकट करता है। अब अगला पद देखें, और वह पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, अब देखो, और पुत्रों के मन को उनके पिता की ओर फेरेगा। देखा, अब जब यूहन्ना एलिया की नाई आया, उसने इसराइलियों के मनों को फेर दिया, बच्चों के मनों को जो तब उसके संदेश को स्वीकार कर रहे थे, पिताओं के मनों को उनके बच्चों की ओर। लेकिन जब वो इस समय पर आता है तो वो कलीसिया के मनों को वापस पेंटिकॉस्टल पिताओं की ओर फेरने जा रहा है। देखो, यह इसके विपरीत है। आपने इसे पकड़ा, अब इसे पढ़ें। अब थोड़ा ध्यान से अब सुनना, और वह पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरेगा। वो प्राचीन रूढ़िवादी याजक वो उन्हें बताने जा रहा है कि क्यों परमेश्वर अब्राहम के निमित्त संतान को इन पत्थरों से खड़ा करने में सक्षम है। क्या आपको नहीं लगता कि आप कर सकते? देखा, अब वो पुराने कठोर रूढ़िवादी याजक के मनों को लेने जा रहा है और उनके मनों को विश्वास की ओर फेरेगा, जो यहाँ पर बालकों के पास था। देखो, अब ये सभी जिनको बपतिस्मा दिया गया है और आने वाले मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसने तुम्हें चेतावनी दी है तुम सर्प के वंशों, उस आने वाले क्रोध से भागने के लिए। ओ प्रभु, आप देखो, वो पिताओं के मनों को बालकों की ओर फेर रहा है और बालकों के मनों को पिताओं की ओर। अब जब यह महान एलिया इस युग के अंत में आता है तो वो पेंटिकॉस्ट के संदेश को लेगा, ताकि बालकों को पिताओं के विश्वास की ओर फेरे, क्योंकि वह उन्हें ताड़ना दे रहा होगा क्योंकि उन्होंने उसी विश्वास को नहीं रखा जो विश्वास वहाँ पहले आरंभ में था। आमीन। अब मैं विश्वास करता हूँ कि हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं यह एलिया होगा, क्या हम नहीं जानते? अब हम इसे जानते हैं और इसके पास। अब आप देखो, प्रभु का भयानक दिन नहीं आया है। मैं अक्सर सोचता था, क्या यह मनुष्य तब केवल एक प्रचारक ही होगा? एलिया ने सारे अद्भुत कार्य किए, कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन जब उसकी आत्मा योहन्ना पर थी तो उसने सारे प्रचार को किया और कोई अद्भुत कार्य नहीं किए। क्यों? यीशु उसके पीछे आने वाला था, वो उन अद्भुत कार्यों को करता है। क्योंकि धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, उसने कहा, अपने पंखों में चंगाई को लिए हुए। तो योहन्ना को अद्भुत कार्यों को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसने केवल मसीह के आगमन की घोषणा की। और वे, अब याद रखना, और ये योहन्ना या एलिया जो आएगा उसे गलत समझा जाएगा। वह प्रभु के सामने इतना अधिक सामर्थ्यवान मनुष्य होगा, इतना तक कि लोग सोचने लगेंगे कि असल में वही मसीहा है, क्योंकि उसके सबसे अच्छे मित्रों ने उससे कहा, तुम वो मसीहा हो। उसने कहा, मैं उसके जूते को खोलने के योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे आ रहा है। क्योंकि वे तब अपेक्षा के अंदर थे ताकि एक मसीहा को देखें। उन्होंने सोचा कि मसीहा आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनके बीच यह महान घटना ऊपर आ रही है, तो उन्होंने कहा, वही वो मसीहा है। योहन्ना ने कहा, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे आ रहा है। ओ प्रभु, आपने इसे समझा? इसलिए उसके नजदीकी मित्र सोचेंगे कि वो ही मसीहा है। अब एक और बात को ध्यान देना, जो बात जगह लेगी, जो इसकी प्रकृति है, वो ठीक प्रभु के दिन से पहले आएगा। अब योहन्ना के दिनों में धरती कभी भस्म नहीं हुई, इसलिए ये बात भविष्य के लिए है। जब वो पहली बार आता है, उसने केवल प्रचार किया, दूसरी बार वह दोनों करेगा, प्रचार और चिन्हों को, जो यीशु मसीह के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है। तो ठीक है, अब आइए हम स्वभाव की ओर देखते हैं कि यह क्या होगा, इस भविष्यवक्ता का स्वभाव जो आ रहा है। अब हम संतुष्ट हैं कि इस अंतिम कलीसिया युग का दूत, जिसका वहाँ पहले पुराने नियम से अनुमान लगाया गया है, अब उसमें से बाकी के नहीं थे। पौलुस, इरेनियस, उनका अनुमान नहीं लगाया गया था, लेकिन इस अंतिम युग के समापन के अंत में, संसार के अंत में, यह इतना जबरदस्त समय होगा जो हमारे ठीक आगे के लिए रखा गया है। तो इस युग के इस दूत का अनुमान लगाया गया था, वहाँ बहुत पहले वचन में, पुराने पवित्र शास्त्र में, इस युग की समाप्ति हो रही है। यह एलिया है, वो एक महान अभिषेकित है। अब देखो, एलिया का स्वभाव किस प्रकार का होना है। सबसे पहले वो एक सामर्थी भविष्यवक्ता होगा, परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा, क्योंकि एलिया सच्चा था और योहन्ना सच्चा था। यह सही बात है, चिन्ह और चमत्कार को करते हुए, जो बालकों के हृदयों को पेंटिकॉस्टल पिताओं के विश्वास की ओर फेरेगा। वो संप्रदायों से घृणा करेगा, जैसे एलिया ने किया। यह सही है, वो करेगा। मैं सोचता हूँ कि हमने तो अभी बस उसके लिए बात को अभी आरंभ ही किया है। लगभग यही समय है उसे आना है। वह संप्रदायों से घृणा करेगा। एलिया ने उनसे घृणा की, और वैसे ही यूहन्ना ने संप्रदाय से घृणा की थी। यूहन्ना ने कहा, आकर ऐसा न सोचें, अब हमारे पास हमारा पिता अब्राहम है। तुम फरीसियों और सदुकियों, तुम जो सांप का झुंड हो, जो घास में के सांप हो, दूसरे शब्दों में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम की संतान को खड़ा करने में सक्षम है। एलिया ने कहा, वे सब भटक गए हैं, उनमें से हर एक जन, कोई नहीं बचा सिवाय अकेले मेरे। ओह प्रभु, वो उन सजी सजाई महिलाओं से भी घृणा करेगा। एलिया ने घृणा की इजेबेल से, क्या यह सही है? यूहन्ना ने घृणा की हेरोदियन से। वे दोनों ही भविष्यवक्ता आत्मा, एक ही आत्मा था। उन्होंने सांप्रदायिक संसार से घृणा की, कलीसिया का संसार, उन्होंने सजी सजाई जो अच्छी स्त्रियां नहीं थी उनसे भी घृणा की। वे उनकी आत्मा में कुछ तो ऐसी बात है जो उन बातों के विरोध में चिल्ला उठी। इजाबेल एलिया के सिर के पीछे पड़ी थी और इसे काट देने वाली थी, और उसने यूहन्ना के सिर को काट दिया। ऐसा हेरोदियन ने किया। वे दोनों ही, यह भविष्यवक्ता एक जंगल प्रेमी होगा एलिया की तरह। वह अकेला जंगल में रहता था, यूहन्ना जंगल में अकेला था। तब हम जानते हैं कि यह एलिया ही होने जा रहा है। तो ठीक है, और यह भविष्यवक्ता वो ऐसा एक होगा जो परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ बना रहेगा। जी हाँ, वो इसके साथ बना रहेगा, सारे वचन के साथ। किसके लिए? एक विश्वास को वापस लाने के लिए, इफिसियस कलीसिया के लिए, जो इस सारे समय से खो गया है। वो विश्वास उस कलीसिया में जो खुला द्वार इसके सामने रखा गया था और इसे अस्वीकार किया गया। न ही शिक्षित व्यक्ति, एलिया एक शिक्षित व्यक्ति नहीं था, तिशबित योना एक शिक्षित व्यक्ति नहीं था। लुका 1:67 बाइबल ने कहा कि वह बालक जैसे ही वह जन्मा था उसे जंगल में ले गया। उस दिन तक जंगल में था जब उसे इज़राइल को दिखाया गया था। यह सही है। एक लुका 1:67 से लेकर 80 पद, यदि आप इसे चिन्हित करना चाहते हैं। यह भविष्यवक्ता भी एक प्रकार का उदास किस्म का व्यक्ति होगा। एलिया उसकी एक बड़ी सभा के बाद कोई भी उसके साथ नहीं मिल सकता था। एलिया के पास शब्द की सामर्थ थी। जब वो वहाँ चला गया और आकाश से आग नीचे बुलाकर और बाल की वेदियों और सब कुछ जला दिया, वह जंगल के अंदर चला गया और उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिताओं की तुलना में बेहतर नहीं हूँ, मुझे मरने दो, क्या यह सही है? और यूहन्ना, वो एक जूनिपर पेड़ के नीचे बैठा था और बड़ी बेदारी के बाद अब वो मरना चाहता था। और यूहन्ना, जब उन्होंने उसे जेल में डाल दिया, इस बुरी स्त्री ने ऐसा किया, वो वहाँ पीछे बैठ गया और उदास होने लगा। मैं सोचता हूँ कि पेन या उसमें से एक ने कहा, उसकी उकाब की आँख ने कारावास में चित्र को देख लिया। उसने अपने कुछ चेलों को भेजा और क्योंकि उसने घोषणा की थी, कहा, वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को दूर ले जाता है। यूहन्ना ने देखा कि अग्नि का खंभा उसके ऊपर मंडरा रहा है, एक पिंडुक की नाई, और नीचे आकर उस पर ठहर गया। इसे सबने देखा और कहा, यही परमेश्वर का मेमना है, और कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? यीशु ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दो। लेकिन जब उन्होंने उसे कारावास में डाला तो वह बहुत जल्दी उदास हो जाता है। देखो, एक प्रकार से कठिन था, कदाचित ही उसे उससे ऊपर नहीं ला सकते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, जाओ उससे पूछो कि क्या वो वास्तव में वही एक है या हमें किसी और के आने के लिए देखना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही जैसा एलिया ने किया। देखिए, बस उसी तरह से वह एक प्रकार से उदासीन किस्म का व्यक्ति था, इसलिए हमें उसके प्रति दुख है क्योंकि हम जानते हैं कि यह क्या है। तो ठीक है, अब वो कलीसिया उसके प्रकटीकरण में मेरे लिए बेहतर होगा इसे ऐसे ही छोड़ दूं। उसके प्रकटीकरण पर वो कलीसिया जब वो खुद को ज्ञात करवाता है, यह सामर्थी एलिया जो परमेश्वर हमारे लिए भेजेगा, जब वो खुद को एलिया की तरह ज्ञात करवाता है तो कलीसिया को छुड़ाए जाने के लिए तैयार होना था, पागानवाद के हाथों से छुड़ाए जाना था। क्या यह सही है? तब जब उसने वहाँ पर आकर और कहा, हम साबित कर देंगे परमेश्वर कौन है, एलिया ने कलीसिया को छुड़ाया। और यूहन्ना, जैसा कि यूहन्ना ने किया, उसने कहा, जब उसने यीशु को देख लिया तो उसने कहा, अवश्य ही कि मैं घटूं, और अवश्य है कि वो बड़े। यूहन्ना ने प्रचार करना आरंभ किया प्रभु के आगमन से ठीक पहले, उसने खुद को ज्ञात करवाया ठीक अंत में प्रकटीकरण। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि एलिया का मतलब अवश्य ही इस युग की इस कलीसिया से है, यह साबित करने के लिए कि वो एलिया था। एलिया उसको अपनी भविष्यवाणी देने के बाद एलिया को मरना नहीं था, उसे स्थानांतरण किया गया और उसे स्वर्ग में उठा लिया गया। एक कलीसिया की प्रतिछाया इस एलिया के अंत में, जो उसके समय के अंत में आएगा, वो कलीसिया रैप्चर में चली जाएगी बिना मृत्यु के साए से होकर गुजरने के, इसका रैप्चर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि वो महान एलिया, वो एक महान जो आने वाला है, वो एलिया अभिषेकित होगा जिसकी अंतिम दिनों के लिए भविष्यवाणी की गई है। आमीन। मैं सोचता हूँ कि वह होगा जब वो आता है, वो दूत या अंतिम दिनों में कलीसिया के लिए संदेशवाहक, एक अस्वीकार किए गए अपमानित लोग, जैसे जैसे ये कलीसिया इसमें चली जाएगी और पहले से ही है। मैं सोचता हूँ कि एलिया की प्रतिज्ञा बाइबल में की गई है। मैं सोचता हूँ कि हम इसे समझ सकते हैं। एलिया ही वो था जिसकी इस दिन आने के लिए बाइबल में प्रतिज्ञा की गई थी। क्या आप यह विश्वास करते हैं? अब आइए अब लौदीकिया की ओर जाएंगे और हम देखेंगे कि आज की रात लौदीकिया के बारे में हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है। तो ठीक है, कलीसिया के लिए शुभकामना। प्रभु के दूत के लिए प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय का 14वां पद, प्रभु के दूत को लौदीकिया की कलीसिया के यह लिख, वो चीजें जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है। ओ प्रभु, हमारे पास सब, यदि हमारे पास ठीक वहाँ इस पर बताने के लिए पूरी रात होती थी, तो किस प्रकार प्रभु इसे हमारे लिए प्रकट करता। देखो, वो आमीन अंतिम होता है, वह पहले ठीक वहाँ से होते हुए उपस्थित हुआ और विभिन्न चीजें, लेकिन यहाँ अंतिम कलीसिया युग है जहाँ वो कहता है, मैं हूँ, यह समाप्ति है, मैं अंतिम हूँ। अब यह दिखाने के लिए कि वो प्रथम भी था, जो कि वह था, वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है। ओह, क्या आपने इसे पकड़ा, समझे? परमेश्वर कैसे सृष्टि हो सकता है यदि वो आत्मा है? वह भला कैसे हो सकता है? वह तो अनंत है, उसकी कभी भी सृष्टि नहीं हुई थी, उसकी कभी भी सृष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो आरंभ में ही परमेश्वर था। लेकिन वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है जो यीशु मसीह था, जब वो प्रकट बना था, जब परमेश्वर उसमें रहा, वो परमेश्वर की सृष्टि है। ओह प्रभु, देखो, पहला और अंतिम, वो महान परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है। जब परमेश्वर ने खुद के लिए एक शरीर बनाया तो वो नीचे आकर उसमें रहा, यही परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है, समझे? ओह, क्या ये अद्भुत नहीं है? अब हम पाते हैं कि पहले उसने ठीक यहीं पर उसकी दैविकता को दिखाया, मैं वो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं वो हूँ जो था, जो है और आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। इफिसुस की कलीसिया के लिए इसे तीन बार कहा, क्या ये सही है? ठीक वहाँ पर लौदीकिया पर आकर और कहता है, मैं वो आमीन हूँ, मैं यहाँ पीछे वो पहला था, मैं यहाँ पर वो अंतिम हूँ, और मैं वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ हूँ, कलीसिया के युगों में से होते हुए जो हमारे पास होना है। आप जान जाओगे कि मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मनुष्य रूप में सृष्टि हुआ, मैं वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ हूँ। आमीन। यह बात प्रेस्बिटेरियन को चिल्लाने को लगाएगी, बस इस पर सोचें, परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ। अब मैं, ओह, मैं इसे कितना पसंद करता हूँ, परमेश्वर की सृष्टि, जब परमेश्वर की सृष्टि हुई थी, जब परमेश्वर यीशु मसीह में देहधारी हुआ था और हमारे बीच में डेरा किया था। अब जो अगला पद होगा अन्य कलीसियाओं के लिए सराहना करता है, लेकिन उसने इस कलीसिया की सराहना नहीं की, उसके पास इसके खिलाफ शिकायत थी, ना कि सराहना। उसने किसी भी बात के लिए सराहना नहीं की इस लौदीकिया युग की। उनके पास जो भी सारा उजियाला था और वे इस पर पीछे चले गए, उनकी कोई भी सराहना करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें तो एक फटकार की जरूरत थी और उन्हें ये मिली। उसके पास इस कलीसिया के लिए एक शिकायत थी, ना कि एक सराहना। अब मैं यहाँ 15वां और 16वां पद पढ़ना चाहता हूँ कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता था, दूसरे शब्दों में केवल गुनगुने ना बने, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। शिक्षित, क्या यह एक सराहना है या एक धर्म भ्रष्ट लौतकिया युग के लिए एक फटकार है? सारे झुंड में से सबसे बदतर उनमें के बाकी सारे पीड़ाओं के नीचे थे और हर एक चीज जो उनके पास थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, वे गरीबी से त्रस्त थे, भेड़ की खाल और बकरियों की खाल ओढ़े भटकते थे और कंगाल थे और उन पर आड़ी चलाई गई और जलाकर मार डाले गए और शेरों को खिला दिया गया और हर एक चीज की गई और उन्होंने फिर भी विश्वास को थामे रखा और ये जो झुंड है धनी है और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है और बाकी की हर एक चीज और एक वैश्य है, ये सही बात है। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी शिक्षा है, मैं आशा करता हूँ कि प्रभु इसमें हमारी सहायता करता है। उसने कहा क्योंकि तू न तो गर्म है न ठंडा, गुनगुना है जैसे दूध। देखो एक बहुत ठंडा दूध अच्छा होता है, क्या ऐसा नहीं है? गर्म दूध आपके लिए अच्छा होता है लेकिन गुनगुना दूध आपको उल्टी करवा देगा। मुझे एक रात की बात याद है, मैं बीमार हो गया था, नीचे वहाँ नदी के पास था, लगभग 25 वर्ष पहले की बात है। मैं वहाँ एक छोटे से झोपड़े की नाव में था, वहाँ नीचे रह रहा था, मैं बीमार हो गया और वे वहाँ पर आए। मेरा साला मुझे डॉक्टर इस्लर के पास ले गया, कहा क्या बात है? मैंने कहा मेरे पेट में मुझे बहुत तकलीफ है। उसने कहा तुम एक गिलास गर्म दूध पियो। ओ भाई, मैंने गुनगुने दूध को पी लिया, इसने मुझे बीमार कर दिया, इसलिए मैंने इसे तब सारा बाहर निकाल कर साफ किया जो मेरे अंदर था। अब परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे चाहता हूँ या तो गर्म हो जाओ बहुत ही गर्मा गर्म, या तो फ्रिज में का ठंडा, दोनों में से एक होना चाहिए, गुनगुने ना होना, क्योंकि तुम मुझे बीमार बना देते हो। यही है जो इस कलीसिया का युग परमेश्वर के लिए करता है, उसे बीमार बना देता है, समझे? या तो नहीं, या तो ना ही बहुत गर्म, या तो बहुत गर्मा गर्म हो या गुनगुने मत बनो, गर्म या गर्मा गर्म, क्योंकि तुम मुझे उल्टी करवाते हो। जॉन वेस्ली के दिनों में एंग्लिकन कलीसिया का ठंडापन उसे हर कहीं सभाओ को करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि ये ठंडापन था, रूखा रूखा था। मैथोडिस्ट कलीसिया का ठंडापन उसी की वजह से विलियम बूथ वो गर्मा गर्म उद्धारवादी बन गया। आप देखना, परमेश्वर ने कहा यदि तुम आकर और पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं धूपदान को निकाल दूंगा, मैं इसे निकाल कर किसी और को दे दूंगा। इसलिए जब मैथोडिस्ट कलीसिया जॉन वेस्ली के पवित्रीकरण को ग्रहण नहीं करता है तो विलियम बूथ ठीक वहाँ पर साल्वेशन आर्मी के साथ आ जाता है और उसे अपने अधिकार में कर लेता है। ये सही बात है, क्यों? उन्होंने इसे संगठित कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें से एक संगठन को बनाया और परमेश्वर ने कहा मैं इस बात से घृणा करता हूँ। तो साथ ही विलियम बूथ ठीक वहाँ पर आ गया और इसे ले लिया और साल्वेशन आर्मी, उसके बाद उसने क्या किया? उसी बात को किया, इसे घुमाकर और इसे फिर से संगठित कर दिया। उसके बाद कैपेबिलिटीज आते हैं और वे कुछ ही समय के लिए अस्तित्व में थे और फिर बैप्टिस्ट के साथ जॉन स्मिथ आता है और फिर उसके बाद नाजरीन लोग आए और फिर नाजरीन के बाद पेंटिकॉस्ट आते हैं। नाजरीन वे क्या करते हैं? उन्होंने उनकी उसी तरह से स्थापना की, इसे संप्रदाय कर दिया। उस समय पर क्या आया? दो छोटी शाखाएं, चर्च ऑफ गॉड और इत्यादि जो वहां बढ़ने लगी। उन्होंने क्या किया? इसे संगठित कर दिया, उन्हें बस ऐसे ही जाने दिया। साथ ही पेंटिकॉस्टल अंतिम बारिश की आशीष के साथ आते हैं, वे क्या करते हैं? संगठित कर दिया, इसलिए उसने बस उन्हें करने दिया। ये सही बात है। अब हम यहाँ अंत पर आ रहे हैं, आप कुछ ही मिनटों में वास्तव में मजबूत हो जाओगे तो ठीक है। तो ठीक है, वो आपको गर्मा गर्म या बहुत ठंडा, दोनों में से एक चाहता है। गुनगुने मत बनो, बस ऐसा ही कुछ तो करने का नाटक नहीं करें जो आपके पास है ही नहीं। या तो परमेश्वर के लिए आग पर रहो या संगठन में वापस चले जाओ, गुनगुने मत बनो। ये अब वही बात है, यही वो बात है जिसने यहाँ इस कलीसियाओं में जगह ली है। वो आपको गर्म या ठंडा चाहता है, वो कोई गुनगुनापन नहीं चाहता है। यही है जो पेंटिकॉस्ट हो गए हैं, एक गुनगुनी स्थिति में है। वे पियानो पर कभी तो एक बार आकर और कुछ ड्रम को लेते हैं और ऐसे वैसे थोड़ा बजाते हैं और इतने संगीत को बजाते हैं, कोई तो उठकर और एक तरह से आप जानते हैं इस तरह से कहता है प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, और संगीत धीमा होने लगता है, ऐसा ही है, ओ मेरे प्रभु परमेश्वर के पेट में तकलीफ देता है, समझे? तो ठीक है, उसके बाद वहाँ वो ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, जैसे कि उनमें एक जैसे कि एक गर्मा गर्म बेदारी चल रही हो, लेकिन उनके पास इस कलीसिया में ढेर सारी यांत्रिकी मशीनरी थी। आप देखना, कारण कि वे धनी थे और ओह प्रभु, वे एक साथ हो रहे थे और बड़ी बड़ी सभाओं को कर रहे थे और इत्यादि। वे इस कलीसिया में अच्छे समय को बिता रहे थे, यह सब सही है, लेकिन यह सब यांत्रिकी मशीनरी है। लेकिन वहाँ पवित्र आत्मा की कोई गर्मी नहीं है। देखा, यहाँ देखना कि उसने यहाँ क्या कहा। देखो कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, और इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। देखा, अब उसने कहा, मैं कहूँगा कि तुम ठंडे या गर्म हो, और क्योंकि तुम नहीं हो, मुझे तुमसे छुटकारा पाना है। ऐसा ही है, अब मैं तुझे मेरे मुंह से उगल दूंगा। अब उनके पास बहुत सा पैसा था, उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें थी, उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बनती जा रही थी, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा की कोई गर्मी नहीं थी। ओ, उनका एक मशीन, एक शासनकाल था। ओ प्रभु, उन्होंने एक संयुक्त कलीसिया को एकत्र किया था। भाइयों, उनके पास अब तक की सबसे बड़ी बड़ी इमारतें थी और ऐसी चीजें बनती जा रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था। समझे, यही है जिसे परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भेजा है, उस पवित्र आत्मा को। अब जैसा कि हम इस 16वें पद को जारी रखते हैं, उनके पास सभी प्रकार की समितियां हैं। ओह, हमारे पास उसका एक बड़ा शासनकाल है, बूढ़ी महिलाओं के लिए सहायता की संस्था है, और युवा पुरुषों के पिनोले, जो ताश के पत्तों का खेल है, और शुक्रवार की रात को बंको खेल होता है, और रविवार दोपहर को वो बास्केटबॉल का खेल, और ओह फलाना और फलाना दिन पर बेसबॉल का खेल होता है, और ओह हमारे पास अब वो पुरुषों की गपशप करने की संस्था है, और ओह हमारे पास सभी प्रकार की चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो सारी चीजों से लदे हुए हैं, उन संस्थाओं से और उन क्लबों से और गाने बजाने से और जो कुछ भी और है, लेकिन पवित्र आत्मा की कोई गर्मी नहीं है। देखो, तुम्हारे पास एक बड़ा रहने का तरीका या ढंग है, लेकिन तुम्हारे पास वहाँ गर्म करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम संसार के लिए गर्म हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। यही वो कारण है कि तुम गुनगुने हो। ओह, तुम्हारे पास पहले से भी कहीं अधिक सदस्य हैं, निश्चय ही लड़के, क्योंकि हमसे 1944 में 10 लाख और अधिक सदस्य जुड़े हैं। बैप्टिस्ट ने कहा, लेकिन आपने क्या पाया है? एक बड़ी मशीन। ठीक उसी कलीसिया में जहाँ मैंने उनकी बताई गई टिप्पणियों को सुना, उन्हें 15 मिनट में खत्म करना होता था कि पास्टर को मौका दे जिससे कि बाहर जा सके, और सारे डिकन और उन सभी को जिससे कि वे धूम्रपान करने के लिए बाहर जाएं और फिर से वापस आएं। देखा, वहाँ पर आप हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से इस प्रकार की बातों की निंदा करता है। यदि तुम इस शरीर को अपवित्र करते हो, डॉक्टर इसकी निंदा करते हैं और कहते हैं ये कैंसर से भरी हुई है, फिर वे रेडियो पर आकर और कहते हैं एक विचारशील मनुष्य की छन्नी। जैसा कि बिली ग्राम ने कहा, वो एक मूर्ख होता है जो कि आरंभ में इस तरह से विचार को करता है। विचारशील मनुष्य की छन्नी, एक विचारशील मनुष्य सिगरेट को बिल्कुल ही नहीं पिएगा, ये सही बात है। आप दूसरे विचार को लेते हैं, लेकिन वो महिलाओं को बताता है कि ये उन्हें सचमुच दुबला पतला बनाता है, आप जानते होंगे, जिससे कि वे इस प्रकार के कुछ तो नई प्रकार की पोशाकें पहन सकती हैं जो उनके पास हैं, वो व्यक्ति जो उसे बेचता है। महिलाएं उससे अधिक सिगरेट पीते हैं जितने की अभी पुरुष पीते हैं, और एक महिला एक पुरुष से तीन गुना अधिक सिगरेट पी जाएगी। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि वह दुबली पतली होना चाहती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि यह टीबी है और कैंसर है, और वे चीजें उन्हें उस तरह से कम करती रही हैं। उन्हें बस एक बालक के आकार में बनाती हैं, जो उनमें आकार उसे इस तरह से खाते जा रहा है, उसे खत्म कर रहा है। इसमें से कोई चीज बाहर नहीं आ सकती सिवाय बुराई के। यह सही बात है, समझे, लेकिन यही है, ये एक विचारशील मनुष्य की छन्नी है। मेरे प्रभु, नहीं नहीं, ओह वे कहते हैं, लेकिन हमारे पास, भाई ब्रैनम, मैं इसका विरोध करता हूँ। हमारे पास शानदार सभाएं होती हैं। देखो, जो बिली ग्राम की देश भर में सभाएं हुई थी, ओह यकीनन एक बड़ी शासन पद्धति। सुसमाचारक लोगों को काम पर रखा जाता है, गीत की अगुवाई करने वालों को भुगतान किया जाता है। जी हाँ, वे उनके सुसमाचारकों को पैसा देकर काम पर रखते हैं। यदि मैं आकर और उस बेदारी की सभा करूं, तो आप मुझे कितना देंगे? तो ठीक है, यदि आप इतने हजार डॉलर का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये सही है। और आप गायन का नेतृत्व करने के लिए किसको दे रहे हैं? ठीक है, तुम जाकर और फलाना और फलाना को किराए पर लो। वो एक बड़ा अकेला गायक कलाकार है, आप उसे किराए पर लो। मेरी आधी भीड़ को तो वो ही खींच लेगा, वह खुद ही कर लेगा। वेतन पर रखा गया अकेला गायक कलाकार, वेतन पर रखा गया सुसमाचारक, क्योंकि यह एक ऐसे स्थान पर आ गया है कि प्राण का बचाए जाना एक व्यवसाय है। प्राण का बचाए जाना कलीसिया का व्यवसाय नहीं है, यह तो कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ है। प्राण का बचाए जाना ना ही एक, आप इसे पैसे से नहीं खरीदते हैं, नहीं श्रीमान, नहीं। यह सब जो है काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। वेतन से रखा गया सुसमाचारक, वेतन से रखा गया गीतों की अगुवाई करने वाला, वेतन से रखा गया गाना गाने वालों का झुंड, बाकी जो कुछ भी है, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। ये तो सब काम करते हैं, परमेश्वर काम को नहीं चाहता है, वो चाहता है कि पवित्र आत्मा आप में काम करे। यह सही बात है। 17वां वचन कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, ओह, यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। उन्होंने सोचा कि वे धनी थे। इस पेंटिकॉस्टल, इस अंतिम युग की कलीसियाओं में उन्होंने सोचा कि वे भारी रूप में थे। जी हाँ श्रीमान, वे धनी हैं। जरा कलीसिया के लिए सोचे जो कुछ वर्ष पहले हुआ करती थी, बाहर कोने पर खड़ी थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगभग फेंकी गई। उसके पास एक कठिन समय था, लेकिन अब उनके पास वहाँ उनमें से कुछ सबसे बड़ी इमारतें हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर वे असेंबली ऑफ गॉड, यहाँ पर जो बाहर हैं, कि जिनके पास ऐसा हुआ करता था, एक साधारण सी लकड़ी की इमारत जहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ करता था, और वे $60 लाख की इमारत बना रहे हैं, और वे कहते हैं यीशु ठीक अभी आने वाला है। आपके कार्य ये साबित करते हैं कि आप ऐसा विश्वास नहीं करते हैं, यह ढोंगीपन है। लाखों डॉलर की इमारत और इस तरह की चीजों का निर्माण कर रहे हैं और कहते हैं यीशु ठीक अभी आने वाला है, और वे गरीब मिशनरियां जो कार्य क्षेत्र पर हैं, जिनके पैरों पर जूते नहीं होते हैं, परमेश्वर से डरने वाली सच्ची मिशनरियां, उनके पैरों पर जूते नहीं होते, और एक सप्ताह में 2 दिन के राशन के चावल से जी लेते हैं, सप्ताह में 2 बार ही खाते हैं, ताकि सुसमाचार को तैयार करके और जंगलों में से होते हुए और इस तरह की चीजों से होकर जाते हैं, ताकि इसे अपने भाइयों के पास ले जाएं। और हम $60 लाख की इमारतें और कलीसिया बना रहे हैं, बड़े बड़े चित्र बने हुए कांच की खिड़कियों के साथ और इत्यादि सब कुछ, और इसे उस पर डालते हैं। ओह, तुम्हारे पास यहाँ तक इतना पैसा है कि कभी कभी उनके पास ठीक उनकी कलीसियाओं में कर्जा देने वाली संस्थाएं होती हैं। ये सही है, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं जो उनके सुसमाचार के प्रचारकों को या उनके मिशनरियों की जांच करते हैं, और कोई तो वहाँ कार्य क्षेत्र में जाना चाहता है तो वे उसकी जांच के लिए डॉक्टर को देते हैं, या मनोचिकित्सक, यह देखने के लिए कि क्या वो, ओह, क्या उसका मानसिक रूप से उसका बौद्धिक स्तर सही है। तो आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा इसकी जांच करता है, आपको एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धनी है और किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। ओह, निश्चय ही आपके पास बहुत सारा पैसा है, भारी रूप से बहुत ही धनी, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चित्र बने हुए कांच की खिड़कियां हैं, और बड़े बड़े शब्द बोलने वाले प्रचारक। ओह प्रभु, ओ मेरे प्रभु, मैं आपको बताता हूँ, वे वास्तव में बड़े बड़े शब्द बोलने वाले हैं, वे पूरी रात खड़े होकर और बात कर सकते हैं और कुछ भी नहीं बताते हैं, समझे। जब वे वहाँ आते हैं, मेरा जिन चीजों के बारे में जो अर्थ है, जो बात उन्हें नहीं बोलना चाहिए, आप देखें खड़े होते हैं और ऐसे ही कुछ बातों को लेते हैं, और थोड़ा कुछ यहाँ और वहाँ की बातें और ऐसा इसके और उसके विषय में बात करते हैं, और आप तो जानते होंगे कि यह किस तरह से करते हैं। वेतन में रखे गए गायक, ये सही है तो ठीक है, पर पुलपिट पर बड़े बड़े शब्द बोलने वाले प्रचारक आते हैं, यदि वे एक टैक्सिडो सूट के साथ मुड़े हुए कॉलर वाले कपड़े नहीं पहनते हैं तो, और किसी प्रकार के फ्रॉक की तरह पीछे से लटकने वाला कोट नहीं पहने होते हैं, इसलिए तो उनकी सभा के लोग वास्तव में शर्मिंदा महसूस करते हैं। और वे गायक वहाँ ऊपर आते हैं, वे स्त्रियाँ इजाबेल की तरह छोटे छोटे बाल, उनके चेहरे पर इतना अधिक रंग पोता होता है कि एक बाड़े को रंग सकते हैं। जैसे ही वे उन वस्त्रों को उतारते हैं, वे छोटे छोटे कपड़े और पुरुषों के कपड़े पहन लेती हैं, और बाइबल ने कहा यदि एक महिला एक पुरुष से संबंधित वस्त्रों को पहनती है तो यह उसकी दृष्टि में घृणित है। अपनी नाक को ऊपर करके वहाँ सड़क पर चलती है, यदि यह बारिश होगी तो यह उन्हें डुबा देगी। ढीठ मनुष्य, घमंडी, छठ क्रोध करने वाली वे इजाबेल, यही कारण है कि हम कोई बेदारी में नहीं है, यह तो एक मशीनरी काम करने की एक बड़ी वस्तु है। ओह, हो सकता है कि एक प्रधान दूत की जैसी आवाज हो और परमेश्वर आपको इसके लिए उत्तर देने को लगाएगा। ये एल्विस प्रेस्लीज और इत्यादि और एर्नी पोर्ट्स या जो भी उन्हें यहाँ कहते हैं, ये अच्छी आवाजों के साथ है और वे उन्हें शैतान के लिए उपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं उनके हाथों से इसे ले लूंगा। यही कारण है कि मैं अंधी पेनी क्रॉसबी का आदर करता हूँ। उसने संसार को कभी भी अपने दान को नहीं बेचा, उसने इसे परमेश्वर के साथ बनाए रखा। इनमें से बहुत से प्रभावशाली गायक हैं, प्रभावित करने वाले पुरुष, बड़े बड़े पुरुष हैं और इत्यादि। परमेश्वर के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के बजाय शैतान ने उन्हें दूषित कर दिया और वे उसके लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रसिद्ध कलाकार, रेडियो और टेलीविजन के प्रसिद्ध कलाकार, उन्होंने अपने आप को बेच दिया है परमेश्वर को इसे देने के बजाय, वहाँ संसार के लिए दे दिया है। उनमें से कुछ कलीसिया के लिए आते हैं, कलीसिया के लिए जाते हैं, एक लंबे अच्छे वस्त्रों को पहनते हैं, वहाँ पर आकर और इस तरह से गाते हैं और ठीक वापस जाकर और अगली रात को रॉक एंड रोल गाते हैं। ऐसे गायक जिन्हें हम जानते होंगे, कुछ कलीसिया से संबंधित हैं, वहाँ पर जाकर और उनके तस्वीरों को लेते हैं, उनकी फिल्में बनाते हैं, वहाँ बाहर जाकर और रॉक एंड रोल गाते हैं, रॉक एंड रोल के राजा हैं और धार्मिक होने का दावा करते हैं। यह शैतान की चाल है। एक मनुष्य के पास यहाँ पर काफी अच्छी सामान्य बुद्धि थी, जिसने कहा कि वो एक प्रचारक बनने जा रहा था। वह रविवार की सुबह को आकर और प्रचार करेगा और फिर वो वहाँ पर जाकर और रेडियो के प्रसारण पर जाकर और रॉक एंड रोल के गाने को गाएगा और इसी तरह से सब कुछ करेगा। अंत में उसने एक पिस्तौल को लिया और अपने मस्तिष्क को उड़ा दिया। मैं ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। यह सही है। उसके पास उतनी ही समझ थी जितना वे सुअर करते हैं। कुछ भी हो, जब उनके अंदर शैतान चला जाता है तो वे दौड़कर पानी की ओर जाते हैं और घुट जाते हैं। कुछ लोगों के पास इतनी भी समझ नहीं होती है। मैं आपको जानता हूँ, मैं उससे नफरत करूँगा, लेकिन भाइयों बहनों, आपको इस बात को हृदय में डालना है जिससे कि ये स्थापित हो जाए। यह वो दिन है जिसमें हम रह रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि यीशु ने हेरोदेस को बूढ़ी लोमड़ी कहा तो योन्ना ने उन्हें सर्प के वंश कहा। उनके पास लंबी इमारतें हैं, चित्र बनी हुई कांच की खिड़कियां हैं, बड़े बड़े शब्दों को बोलने वाले प्रचारक, वेतन पर रखे गए गायक हैं। जी हाँ श्रीमान, उन्हें इनमें क्या मिलता है? इनमें क्या है? कुछ भी पवित्र आत्मा का नहीं। वहाँ खड़े रहते हैं और बाहर जाकर छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और अंदर आकर और गीत गाने वालों के झुंड में गाते हैं, तुम अभागे पाखंडियों। जी हाँ श्रीमान, ये सही है। और तुम प्रचारक जो कि एक सभा में जाते हो क्योंकि वे आपको किसी अन्य स्थान की तुलना में अधिक पैसे देते हैं, तुम धूर्त हो, तुम पुलपिट में रहने के लायक नहीं हो। ये सही बात है। पैसा, यदि तुम इतने हजार डॉलर देना उपयुक्त नहीं समझते हो तो ठीक है, हम नहीं आ सकते, हमारे प्रबंधक और इत्यादि वहाँ पर आएंगे। यदि तुम हमारे लिए पैसे का इंतजाम कर सकते हो तो हम आ जाएंगे। यदि मुझे हर किसी से पूरा समर्थन नहीं मिलता है तो मैं नहीं आऊँगा। यदि मुझे सभी लोग पूरी तरह से सहयोग नहीं करते, सारी कलीसियाएं, जिससे कि मेरे पास मेरे कर्जों को चुकाने के लिए अच्छा पैसा हो, तो मैं नहीं आऊंगा। भाई, परमेश्वर का एक सच्चा मनुष्य चला जाएगा यदि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की, चाहे जो कुछ भी वहाँ भेंट को रखा गया हो। यदि उसे एक सूखी पपड़ी खाना पड़े और बहता हुआ पीने के लिए पानी हो, यह सही है, वो परमेश्वर का सच्चा सेवक है। लेकिन लोग खुद को उन प्रसारण से और रेडियो और टेलीविजन और संसार की सभी प्रकार की चीजों के साथ बांध लेते हैं जब तक कि उन्हें उस तरह का पैसा नहीं मिलता। यह बिल्कुल सही बात है, समझे? यह परमेश्वर नहीं होता है। उसने कहा, ओ तुम धनी हो, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, निश्चय ही, लेकिन जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है वह तुम्हारे पास नहीं थी। यह सही है, लेकिन तुम इसे नहीं जानते। देखो, धनी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वे जिस काम को कर रहे हैं उस बात का दाम उन्हें दिया जा रहा है। पत्तों को खेलना, ओह, आप कहते हैं हमारी सभा में बहुत से लोग हैं, ओह निश्चय ही, जी हाँ श्रीमान, सबसे ज्यादा सभा के सदस्य, क्योंकि आप जानते होंगे शहर का मेयर हमारे कलीसिया में आता है। ये सही बात है। तो ठीक है, आप जानते होंगे फलाना और फलाना को, और जब वे शहर में आते हैं तो वे हमारी कलीसिया में आते हैं। हमारी कलीसिया में सारे प्रसिद्ध लोग हैं, जी हाँ, और निर्धन जरूरतमंद संतों को कलीसिया में आने दो और वे आपको फटकार लगाएंगे। आप उन्हें वहाँ चाहते भी नहीं हैं। तुम डरते हो कि कोई आमीन कहेगा जब आप प्रचार कर रहे होते हो, जैसे कि वो छोटी महिला, मैंने एक बार यहाँ एक छोटी किताब में पढ़ा, वो एक कलीसिया में आती थी, उसके बच्चे, उसने उन्हें एक पुरानी चरण की कलीसिया में बड़ा किया था जो उस जंगल में कहीं पर तो रहती थी जहाँ वे सचमुच में धार्मिक थे। तो एक दिन एक युवा पुरुष वहाँ पर आया और लड़की से विवाह किया, कहा कि वह बाहर की कलीसिया से था, आप जानते होंगे शहर में की उसी संप्रदाय की बड़ी कलीसियाओं में से एक। तो उसने उसकी माँ को बताया कि वो मसीही था, सो उसने उसकी बेटी से विवाह कर लिया और उसे वहाँ से लेकर चला गया। खैर, अतः वो उसे पीछे पहाड़ों में की उस छोटे पुराने देश की कलीसिया से अलग किया, यहाँ बाहर की ओर इस विशाल बड़ी सुंदर कलीसिया में जो उसी नाम की थी, लेकिन वहाँ पर पीछे उनके पास पवित्र आत्मा था, पर यहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जब वे वहाँ पर आए इस विशाल बड़ी सुंदर कलीसिया में, तो एक दिन माँ ने कहा वह उसकी बेटी से मिलने के लिए वहाँ पर आ रही थी। खैर, उन्होंने सोचा कि उस दुनिया में वे उसके साथ कैसा चल रहे होंगे, इसलिए जब वो वहाँ पर आई तो वो कुछ तो एक यादगार की किताब से बाहर निकली हुई चीज की तरह लग रही थी। उनमें से एक छोटी बड़े गर्दन वाली पोशाक पहने हुए, आपको पता होगा, और लंबी आस्तीन और उसके बाल पीछे से कटे हुए, प्यास सा चिकना चेहरा इस तरह से पीछे की तरफ कटे हुए, और आप जानते होंगे। और वह नीचे आई और कहने लगी, कुशल, हालेलुया, प्रिय, तुम सबसे कैसे मिलते हो? तो उसने कहा, अब सुबह को रविवार है। कहा, आप सभी को मिलेंगी? क्या आप नहीं मिलेंगी? पति ने कहा, हम उसके साथ क्या करें? कहा, हम उसे वहाँ पर इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं। और कहा, तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो ठीक है, उसने कहा, माँ, मैं आपको बताता हूँ, हम, ओह, उसने कहा, लेकिन प्रिय, मैं कलीसिया के बाहर नहीं रह सकती, निश्चित रूप से यहाँ पर आसपास कुछ फलाना फलाना कलीसिया है। ओह, वह, उसने कहा, मैंने वहाँ कोने पर एक कलीसिया देखी है, मैं बस वहाँ पर चली जाऊंगी। और उसने कहा, ओह, तो ठीक है, हमें बस ऐसा ही करना होगा। जब वे अंदर गए तो उन्होंने उसे पहले अंदर जाने दिया। देखा, उन्हें उससे शर्म आ रही थी। वहाँ पर वो उस छोटी स्कर्ट पहने हुए सड़क के उस ओर आती है, आप जानते होंगे, और उसकी बाइबल को उसके बगल में दबाए हुए। खैर भाई, हो सकता है उसका नाम कौन है उसमें नहीं था, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि मेमने के जीवन की किताब में उसका नाम था। यही तो मुख्य बात थी। जब वो कलीसिया में चलकर आई तो वो वहाँ पीछे बैठ गई। उसने एक अपने लिए सीट को लिया, आप जानते हैं, और बाइबल को खोलकर और वो पढ़ने लगी, और हर कोई यहाँ वहाँ देखने लगा, सोचने लगे कि किस तरह का एक नमूना कहीं तो बाहर से उतर आया है। इस तरह से इधर उधर देखा, ओ परमेश्वर, वे उनके सुंदर कपड़ों को पहने हुए थे, आप जानते होंगे, लौदीकियन का नमूना, और उनके सुंदर कपड़े और इत्यादि। पीछे देखा और एक छोटी माँ को वहाँ बैठे हुए देखा, जो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ थी, आप जानते हैं, बाइबल को पढ़ रही थी। जी हाँ, और पास्टर थोड़ी देर बाद जब वे दूसरी बातों में से होते हुए गए, उसके बाद तो उसने, अतः उसके पास बात करने के लिए लगभग 15 मिनट थे, तो वो उठा और उसने कहा, प्रभु भला है। महिला ने कहा, परमेश्वर की स्तुति हो, ये सही है, हालेलुया। और हर कोई उनकी गर्दन को लंबी करके बदक की तरह यहाँ वहाँ देख रहा था कि ये कौन था। और फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा हर युग में मसीहों को साहसी, महान, भला मसीह होना चाहिए, या इसी प्रकार से कुछ तो बताते हुए। उसने कहा, परमेश्वर की स्तुति हो, ये सही बात है। और वे सब यहाँ वहाँ देखने लगे, और उसने कहा, उसके डीकन बोर्ड की ओर देखा, और डीकन बोर्ड, वे समझ गए, वे पीछे जाते हैं और उस छोटी महिला को हाथों से पकड़ते हैं और उसे दरवाजे से बाहर ले जाते हैं। कहा, तुम पास्टर को रुकावट डाल रही हो, तुम मरे हुए हो और यह नहीं जानते। जी हाँ, ओह, तुम्हारी चित्र छपी हुई कांच की खिड़कियाँ, क्या परिणाम होगा? तुम्हारी आलीशान कुर्सियाँ क्या है, और तुम्हारी सारी बड़ी मंडली क्या है, जो बस सीधे नरक में जा रहे हैं, जैसे कि मार्टिन उसके कैद में। क्योंकि यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो आप नष्ट हो जाते हैं। जब तक आप फिर से जन्म नहीं लेते हैं, आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते हैं। यही कड़वा है, यह ऐसा है जैसे कि मैं हमेशा अरंडी का तेल पीता था। मैं कहता, माँ, मैं यहाँ तक इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। उसने कहा, यदि ये तुम्हें उल्टी नहीं करवाता तो ये तुम्हारे लिए कोई फायदे का नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में भी इसी तरह से है। ओह, यदि आप उनसे बात करते हैं, ओह, बड़ी सुंदर इमारतें और इत्यादि हैं, और वे आप उनके कलीसिया जाएं, आप कहेंगे, आप उनकी कलीसिया में जाएं और कहें, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, क्या आप पेंटिकॉस्टल हैं? ओह जी हाँ, निश्चय ही हम पेंटिकॉस्टल हैं। क्या आप फिर से जन्म लेने में विश्वास करते हैं? जी हाँ, ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओ, इस इमारत को देखो, तुम्हें पता है कि इस इमारत पर कितना, इस इमारत की लागत कितनी है? इसे खड़ा करने के लिए $1 मिलियन का 3/4 खर्च हुआ है। तुम्हें पता है, हमारे पास ये इस तरह से नहीं होते थे, हम उस गली में वहीं पर हुआ करते थे। और अपने आसपास देखो, तुम इन सारी बड़ी बड़ी चीजों को देखो जो उनके पास है। जी हाँ श्रीमान, और फिर वे कहते हैं, ओ हमारे पास ये सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन उनके पास खोए हुए प्राणों के लिए कोई भी बोझ नहीं है। वे हमेशा ही आपको दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कितनी इमारतें हैं। हमारे रविवार के स्कूल के दस्तावेज को देखो, ये कितना बड़ा भरा हुआ है। इससे भला क्या होगा यदि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता है? धनी संपत्ति में वृद्धि, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। यही है जो उसने कहा, तुम इसे सोचते हो लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम कंगाल, अभागे, तुच्छ, अंधे, नंगे हो और ये नहीं जानते। देखा, ऐसा ही है। ओह निश्चय ही, वे कहते हैं, क्या आप जानते हैं, हम हमेशा ही जिस कलीसिया को हम उपयोग किया करते थे, वे वहाँ पिछले हिस्से में है। ये अब बड़ी एक कलीसिया है, और मैं आपको बताता हूँ, प्राणों के लिए कोई बोझ नहीं है, लेकिन वे उन बातों को देखते हैं कि इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए, महिलाओं की सहायता और इन सभी अन्य बातों का, सभी बातों का ध्यान रखा जाना है, लेकिन खोए हुए प्राणों के लिए कोई बोझ नहीं। ओह भाई, ये कलीसिया किस ओर चली गई है? उन्हें प्राणों के लिए बोझ नहीं था, लेकिन वे धन के बोझ से दबे हुए थे। ये सही है, उनके पास गलत बोझ था, उनके पास अपने धन का बोझ था, लेकिन खोए हुए प्राणों के प्रति बोझ नहीं था। वचन ने कहा, वे नहीं जानते थे कि वे अभागे थे। ओह दयनीय, अंधे, वे सोचते हैं कि वे पैसे को लेकर और संसार को बदल सकते हैं। ओह यदि हम केवल एक कार्यक्रम को जारी रख सकते हैं तो हमें यहाँ बहुत सा पैसा मिल सकता है। मेरा विश्वास है कि हम संसार को बदल सकते हैं। यदि हमारी कलीसिया से कुछ धनी लोग हैं, भाई ब्रैनम, हम केवल उन्हें खोज कर निकाल सके, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम एक संस्था को आरंभ कर सकते हैं जो कि यहाँ वहाँ जाकर और संसार को परिवर्तित कर सके। हम हवाई जहाज को ले सकते हैं और पूरे अफ्रीका में साहित्य सामग्री को और इस तरह की चीजों को ऊपर से गिरा सकते हैं, यदि हमारे पास बस कुछ पैसे होते थे। भाई, संसार को पैसे से नहीं बदला जाएगा, संसार को पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित किया जाएगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, भरे प्रचार से और क्रूस ही केवल वो एक बात है जो संसार को बदल देगा। परमेश्वर की योजना पैसा नहीं है, यह तो पवित्र आत्मा है। यही लौदिकियन कलीसिया युग या अन्य कलीसिया युग के लिए परमेश्वर की योजना है। जी हाँ श्रीमान, वे पवित्र आत्मा को चाहते हैं। ओह वे कहते हैं, हमारे पास सोना है, ये सोना था तो अच्छी बात है, लेकिन सही तरह का सोना नहीं। उनके पास बहुत सा सोना था लेकिन सही तरह का सोना नहीं था। अब इसलिए उन्हें यीशु के द्वारा आज्ञा दी गई, मैं जानता हूँ कि तुम धनी हो और तुम्हारे पास सोना है और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आकर आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। एक अलग तरह का सोना, जी हाँ, ऐसा सोना जो आग की भट्टी में परखा गया है, जो कि मृत्यु की अग्नि से होकर गुजरा है, जो कलवरी से होकर गुजरा, वहाँ से बाहर आया है। यह ढेर सारा सोना जो अब तुम्हारे पास है वो दूषित है, यह सड़ जाएगा, यह जंग खा जाएगा। यदि आप इसे चिन्हित कर सकते हैं तो याकूब, संत याकूब 5:1-4, और आप समझ जाएंगे जो कहा गया है, जाओ तुम धनवान लोगों, अब प्रभु के आगमन पर चिल्लाओ और रो अपने दुखों के लिए जो तुम पर आए हैं, तुम्हारा सोना तुम में सड़ गया है। देखो, इसी प्रकार का सोना है जो सड़ता है, लेकिन जो सोना यीशु देता है वो पवित्र आत्मा है। आत्मा का सुनहरा तेल आपके हृदय के अंदर उंडेला जाता है और ओह प्रभु, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मुझसे सोना मोल ले यदि तू धनी होना चाहता है। ओह जी हाँ, वे अंधे थे। अब इस तरह से अंधा होना बुरा है? मैं नहीं सोचता कि ये मसीह इतने अंधे थे, जबकि उनकी निकट की धुंधली दृष्टि थी। मैं सोचता हूँ कि उनकी निकट की धुंधली दृष्टि थी। केवल चीज जो वे देख सकते हैं वो उनकी बड़ी बड़ी इमारतें थी। केवल चीज जो वे देख सकते थे जो उनकी सभा में अधिक संख्या के लोग थे। केवल चीज जो वे देखते हैं, अच्छा कॉर्निश गाना गाने वाला झुंड जो उसके लंबे वस्त्रों और इत्यादि के साथ था। मैं सोचता हूँ उनकी तब निकट की दृष्टि धुंधली थी, वे शायद अपनी नाक के ऊपर भी नहीं देख सकते थे। मैं नहीं सोचता कि वे अंधे थे, उनकी बस निकट की दृष्टि धुंधली थी। वे वही सब देख सकते थे जो उनका ठीक है, क्या तुम जानते हो हम फलाना और फलाना से संबंध रखते हैं, उनके बड़े बड़े संप्रदाय, उनकी बड़ी भीड़, बहुत से सदस्य, उनके रविवार के स्कूल, उनकी बेहतरीन इमारतें, लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। यीशु ने कहा उन्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। तो प्रभु ने उनसे कहा, आंखें, यदि तुम आंखें बहुत ही खराब है और तुम्हारी निकट की दृष्टि इतनी धुंधली है, यहाँ तक तुम कुछ भी नहीं देख सकते सिवाय यहाँ तुम्हारी बड़ी बड़ी इमारतों के और तुम्हारी बहुत अधिक सभा के लोगों की संख्या के और तुम्हारा शहर का महापौर और तुम्हारी कलीसिया में आने वाले सारे लोग और तुम्हारे पास प्रसिद्ध लोग हैं और तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन तुम वो अंधे हो और तुम्हारी आँखों में वो पीड़ा होती है, तो मैं तुम्हें कुछ आँखों का सुरमा बेचूंगा। जी हाँ, देखो यह उन दैवत्य के विद्वानों के लिए अजीब बात है कि उनमें से किसी के पास भी यह नहीं था। क्या ऐसा नहीं है? उनके पास बहुत सा इत्र था, बहुत से धर्म शास्त्र थे, लेकिन उनकी आवश्यकता आँखों के सुरमे की थी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की, ताकि अपनी आँखों पर रगड़े और वे प्रभु के आगमन को देखने पाएं, वे बाइबल को देखने पाएं, वे वचन को देखने पाएं। वे जानते हैं कि कैसे आमीन कहना है। ऐसा बिल्कुल सही है, उनके पास इत्र था, उनके पास सारे लेप थे, लेकिन उन्हें आँखों के सुरमे की आवश्यकता थी। प्रभु ने कहा तुम्हें कुछ सुरमे की आवश्यकता है जो तुम्हारे आँखों पर चला जाए और यह उन्हें खोल देगा। हमेशा ऐसा हुआ करता था जब मैं छोटा लड़का था, मैंने इसे बताया है, मैं सोचता हूँ मैंने इसे कलीसिया में बताया होगा, यह अभी मेरे मन में आया। मैं कुछ हद तक वहाँ केंटकी के पहाड़ों में पला बड़ा था और हम एक पुराने लकड़ी के बने घर में रहते थे, माँ यहाँ, और उनमें सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा सा पुराना स्थान था और हमारे पास एक सूखे घास की चटाई होती थी और फिर उस सूखे घास की चटाई के ऊपर एक पंख का बना हल्का गद्दा होता था। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं कि यह एक पंखों का गद्दा क्या होता है या एक सूखे घास का बिस्तर, एक पुराना सा बिस्तर। हम बहुत ही गरीब थे, पिता और माँ का सीढ़ी के नीचे की ओर बिस्तर हुआ करता था और इसलिए हम एक छोटी सी सीढ़ी पर चढ़कर और ऊपर चले जाते और माँ कभी कभी एक पंखों की खोल पर टाट के टुकड़े और इत्यादि को रखती, जिससे कि आप जानते होंगे आप उस पर खड़े होते हैं और वहाँ वो रखा रहता और उन पुराने ऊपर खुले हुए झरोखों के बीच में से बाहर तारों की गिनती करते, उसे खुला रखते जिसमें से पुराने चांद की रोशनी आती थी, आप जानते होंगे, और वहाँ इस तरह से ऊपर की ओर छत में एक बड़ा छेद होता है और इसलिए जब यह बर्फ या कुछ तो और गिरता या बारिश होती तो हम जो छोटे छोटे बच्चे थे इस टाट के टुकड़े के नीचे अपने आप को छिपा लेते, आप जानते होंगे, उन्हें हम भीगने से बच सके, और कभी कभी उन छेदों के झरोखों में से होते हुए हमें ठंड लगने लगती और हमारी आँखों में पदार्थ जमा हो जाता, आप जानते होंगे हमारी आँखों में ठंड ठंड से पूरी तरह से बंद हो जाती है। और सो माँ हमें सुबह को बुलाती, नीचे आ जाओ, मैं कहता मैं नहीं आ सकता माँ, क्योंकि मेरी आँखों में पूरी तरह से पदार्थ जमा हो गया है, इसमें कचरा जमा हो जाता, आप जानते होंगे आँखों में ठंड लग जाती है, आप उन्हें नहीं खोल सकते, आप जानते हैं, एक छोटा सा लड़का वहाँ पड़ा हुआ रहता और मैं और हम्पी और वे अपनी आँखें खोलने की कोशिश करते और हम इसे नहीं कर पाते, अंधापन। मेरे दादाजी एक जो चाल से जानवरों को फंसाने वाले थे, वे कून रैकून नामक जानवर को फंसाते और ये हमारे घर पर एक उपचार होता था जो कून का तेल था, हम जूतों पर कून के तेल से तेल लगाते और यदि आपको कंठ रोग होता था तो वे उस तेल पर थोड़ा सा तारपीन डाल देते और बस हाँ आपको इसे निगलना होता था, इसलिए ये कंठ रोग के लिए उपचार था। और फिर जब हमारी आँखों में कुछ पदार्थ जमा हो जाता तो माँ कचरे को साफ करती, ठीक है बस एक मिनट प्रिय, वह रसोई घर में भाग कर जाती और कून के तेल के इस बड़े पुराने कप को लेती और इसे वहाँ रख देती और इसे बहुत अधिक गर्म करती और वो वहाँ ऊपर आकर हमारी आँखों को रगड़ती देखती रहती जब तक कि ये काम नहीं कर लेता और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता मैं देख सकता था, अपनी आँखें खोल सकता था, वो कून का तेल इसे खोल देता। और मैं आपको बताता हूँ हमारे पास कुछ बहुत ही बड़े बड़े खिड़की के झरोखे होते थे, समझे, देश भर में सबसे ज्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है। बैप्टिस्ट ने कहा अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं, पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है और कोई अन्य जुबान में बोलना नहीं है, प्रभु यीशु के नाम में कोई बपतिस्मा नहीं है और ओह सभी तरह के खिड़की के झरोखे और यह किसी प्रकार की आत्मिक ठंड ने बहुत सारी आंखों को बंद कर दिया है। उन आंखों को खोलने के लिए खून के तेल से भी ज्यादा चाहिए भाई, इसे पवित्र आत्मा का एक ताजा बपतिस्मा चाहिए आपकी आंखों की मालिश करने के लिए। और आप देख सकते हैं, ये आपकी निकट की धुंधली दृष्टि को आप में से ठीक कर सकता है, जिससे कि आप देख सके कि परमेश्वर का वचन सत्य है, ये सही है। ओह, मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आकर मुझसे आंखों का सुरमा ले लो, और इस तरह से तुम्हारी आंखों को अभिषिक्त करता है। सो आप धर्मशास्त्र के ज्ञानी के पास सारे धर्मशास्त्र और उनके पास इत्र और इत्यादि चीजें हैं, लेकिन उन्हें इससे भी और अधिक चीज को लेना है। यह पवित्र शास्त्र को लेता है आत्मिक दृष्टि को देने के लिए, ताकि स्वर्गीय सामर्थ्य के कामों को देखें। पवित्र आत्मा का सुरमा, वो सुरमा एक गर्म तेल है, हम ये जानते हैं। और तब पवित्र आत्मा परमेश्वर का तेल है, और सारे धर्मशास्त्री और इत्र कहते हैं, ओ भाई प्रिय, तुम बिल्कुल सही हो, वहाँ कुछ भी गलत नहीं है, हर एक चीज सही है। खैर, हमारे पास शहर में सबसे बड़ी कलीसिया है, यह इत्र काम नहीं करेगा। नहीं श्रीमान, ये आपको ठीक बराबर यहीं पर दिखाएगा निकट की दृष्टि, और कहता है जी हाँ, हमारे पास सबसे बड़ी कलीसिया है। लेकिन उस न्याय के बारे में क्या जो आगे आ रहा है, जब परमेश्वर को आपको जवाब देना होगा, तुम जो लौदिकियन कलीसिया के सदस्य हो। मैं यहाँ बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन मेरा टेप हो रहा है और दुनिया भर में जा रहा है, आप देखना, इसलिए मैं इस समय पर बहुत से लाखों लोगों से बातें कर रहा हूँ, आप देखो। तो ऐसी बात है, लौदिकियन गुनगुने पीछे हटे हुए नजदीक की धुंधली दृष्टि, मुझे नहीं पता जो भी है, खच्चड़ एक संकरित होता है, उसके पास आरंभ से ही कोई सहज बुद्धि नहीं होती है, और आप उससे बात करें तो वो अपने बड़े कान को खड़ा कर देगा, कहेगा हाँ 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 हाँ, उसके प्रति कोई दया नहीं है, वो एक संकरित है, वो एक घोड़े और गधे के बीच का है। अब यही वो मामला है, आपने निकोलियन और लौदिकिया को एक साथ रख दिया और आपको फिर से एक गधा मिल गया है। हमें क्या आवश्यकता है, यह सही है, वे नहीं जानते, आप उन्हें दैविक चंगाई के बारे में बताएं, यीशु के नाम में बपतिस्मा के बारे में बताएं, वे कहेंगे हाँ हाँ, मेरा पास्टर नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि हम प्रेस्बिटेरियन हैं, ऐसा विश्वास नहीं करते हैं, अज्ञानता, इस बारे में आप इसे क्या कहेंगे। मैं एक खच्चर से घृणा करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक अच्छा कुलीन अच्छी नस्ल का घोड़ा पसंद है। भाई, आप उसे कुछ तो सिखा सकते हैं, आप उसे झुकना सिखा सकते हैं और सर्कस में ले जा सकते हैं, और वो लगभग एक मनुष्य की तरह ही कर सकता है, क्योंकि वो कुछ तो जानता है, उसकी एक अच्छी वंशावली है। एक खच्चर नहीं जानता कि उसका पिता कौन था या उसकी माँ कौन थी, और वह अपने आप से फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसी तरह से ये कुछ पुराने ठंडे औपचारिक संप्रदायों के साथ है, वे फिर से कभी भी ऊपर नहीं आ सकते हैं। जैसे ही कलीसिया एक संप्रदाय में चली जाती है, यह मर जाती है, यह फिर से कभी ऊपर नहीं आती है, यह क्या है, यह संकरित है। मार्टिन लूथर पूरी तरह ठीक था, लेकिन जब उसने संगठित किया तो उसने क्या किया। मेथोडिस्ट सब ठीक था, जब उसने संगठित किया तो उसने क्या किया। पेंटिकॉस्टल सब ठीक था, लेकिन जब आपने इसे संगठित किया तो आपने क्या किया। आप इसे संकरित करते हैं, आपने इसे निकोलियन कैथोलिक कलीसिया के नस्ल के अंदर डाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही आपने किया है, उसके बपतिस्मा के रूप को ले लिया, उसके तरीके और कार्य को ले लिया, और बाइबल ने कहा तू एक वेश्या, एक अनैतिक कार्य करने वाली की पुत्री है, वेश्याओं की एक पुत्री, बिल्कुल सही है। एक अच्छी वंशावली का घोड़ा सदा वो कुलीन होता है, ओह वो अच्छा है, मैं उसे पसंद करता हूँ, उसके सिर को अपने कंधों पर रखें, वो प्रेमी होता है, उदार होता है, क्यों, वो जानता है कि उसका पिता कौन है, वो जानता है कि उसका दादा कौन है, वो जानता है कि उसके दादा का पिता कौन था, वह पीछे की ओर जा सकता है, वह अच्छी वंशावली का है। और मैं एक वास्तविक वंशावली मसीह को देखना पसंद करता हूँ, न ही अपने ऊपर ठप्पे को लिए हुए, वह पिछले हफ्ते मेथोडिस्ट है और इस हफ्ते बैप्टिस्ट और इस हफ्ते एक पेंटिकॉस्टल और एक पिलग्रिम होलीनेस है, वह नहीं जानता कि उसका पिता कौन है या उसकी माँ कौन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, वो आपको पेंटिकॉस्ट के दिन पर वापस ले जा सकता है, आपको बता सकता है कि उसकी वंशावली पेंटिकॉस्टल है। आमीन। मैं अपने सिर के ऊपर से लेकर अपने पैरों के तलवों तक पेंटिकॉस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा मतलब पेंटिकॉस्ट संप्रदाय से नहीं है, मेरा मतलब पुनरुत्थित मसीह की वास्तविक सामर्थ्य से है, वास्तविक पेंटिकॉस्टल की आशीष से है। आंखों का सुरमा, अपनी आंखें खोलें ताकि हम पीछे मुड़कर देख सके कि ये कहां से आया है। आप बस देख रहे हो कि कलीसिया आज क्या है, पीछे मुड़कर देखें कि ये कहां से आया है, उसके बाद परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते रहें, आप इससे दूर हो जाएंगे। जी हाँ श्रीमान, तो ठीक है, मैंने एक और बात पर ध्यान दिया, कहा वे नंगे हैं, नंगे और इसे नहीं जानते, निश्चय ही ओह नंगे और इसे नहीं जानते। अब वो व्यक्ति एक अभागे स्थिति में है, यदि एक मनुष्य तुच्छ, अंधा, अभागा, नग्न है, अब यदि वो इसे जानता है तो वो खुद की सहायता करेगा, लेकिन यदि वो इसे नहीं जानता है तो वो बेचारा मनुष्य मानसिक रूप से खत्म हो चुका है। क्या ये सही है? यह एक तरह से कड़क था, मानसिक रूप से खत्म हो गया है, उसे इतना भी नहीं पता कि खुद की सहायता करे। आपने किसी को सड़क पर आते हुए देखा है जो कंगाल, अभागा, अंधा, तुच्छ और नंगा है, और आप कहते हैं भाई आप नग्न हैं, ओह मैं क्या हूँ, ओह ओ भाई किसी तरह से मेरी सहायता करें, मुझे कपड़े पहनाने में मेरी सहायता करें, लेकिन आप उसके पास जाकर और कहते हैं बताएं क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया, तुम हो क्या एक पवित्र चीखने चिल्लाने वाले, अच्छा बोलो तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं फलाना फलाना से हूँ और ये और वो हूँ, नंगे हैं और इसे नहीं जानते। अब मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, बाइबल ने इस युग के बारे में इसे कहा है, नंगे हैं और ये नहीं जानते, आओ मेरे पास से कुछ वस्त्र को खरीद लो, उसने कहा सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र संतों से संबंधित है, यह संतों की धार्मिकता है, समझे, नंगे हैं, ओह निश्चय ही, जी हाँ श्रीमान, ओह आप कहते हैं भाई ब्रैनम हमारी कलीसिया नहीं है, यह शहर की सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली कलीसिया है, मैं इसे संदेह नहीं करूंगा, कुछ नवीनतम फैशन, सबसे बेहतर कटे हुए कपड़े जो नवीनतम हॉलीवुड के सितारे पहनते हैं, इतने कामुकता से भरे हुए कि आप सड़क पर हर एक पुरुष के ध्यान को आकर्षित करते हैं, निश्चय ही। एक महिला ने मुझसे कहा भाई ब्रैनम आपका मुझे बताने का मतलब क्या है, अब हम इन कपड़ों को दुकानों से ही खरीदते हैं और यही सब है जो आप खरीद सकते हैं, मैंने कहा वे अभी भी उन बिना सिले हुए कपड़ों को बेचते हैं और सिलाई मशीन को बनाते हैं, उसके लिए यह कोई बहाना नहीं है। बाइबल ने कहा जो कोई भी एक स्त्री की ओर कुदृष्टि से देखता है वो उसके साथ व्यभिचार कर बैठा, क्या यह सही है? ठीक है, तब यदि स्त्री खुद को कामुकता के कपड़े पहनाती है और खुद को एक पुरुष के सामने रखती है तो इसके लिए कौन दोषी है? वो स्त्री दोषी है, उसने इसे उत्पन्न किया, यह बिल्कुल सही है। अब आप अपने पति के लिए एक सोसन के फूल की तरह पवित्र हो सकती हैं। आप एक युवा लड़की हो सकती हैं, जिसने कभी भी अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया हो। आपको कुंवारी होना है जब आप अपने पति से विवाह करती हैं। लेकिन यदि आप उस तरह के कपड़े पहनती हैं और आप इसका कारण बनती हैं कि पुरुष आपकी ओर इस तरह से देखे, तो वो अपने हृदय में पहले से ही आपके साथ व्यभिचार कर बैठा है, उस पापी ने आपकी ओर देखा। एक मसीह के रूप में आप हो सकता है शहर में सबसे बेहतर कटे कपड़े पहने हुए हो, सबसे अच्छे ऊनी कपड़े, लेकिन ऐसे कपड़े परमेश्वर के एक संत के लिए नहीं बनते हैं कि वे इस तरह से कपड़े पहने, ओह जी हाँ परमेश्वर एक संतान के लिए नहीं होते हैं, ओ नहीं, वे कहते हैं तो ठीक है, वे कहते हैं हमारी कलीसिया आपने अच्छी तरह कपड़े पहने हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहने थे, वे धनी थे, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, निश्चय ही, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ तक कि हमारा पास्टर एक बड़े लंबे वस्त्र को पहने हुए बाहर चलता फिरता है, सारे गाना गाने वाले का झुंड लंबे वस्त्र पहने हुए बाहर चलता है, शैतान इसके नीचे लपेटा हुआ रहता है, ओहो ओहो ये सही है, ओह खैर मेरे लिए याद तो बेहतर है उस एक बात को नहीं कहूँ, इसलिए हो सकता है मैं इस एक को जाने दूँ, तो ठीक है, ओह ये सारी बड़ी चीजें, वस्त्र पहना हुआ गायन झुंड, गायन करने वाले झुंड को उन्हें गाना गाने के लिए पैसा देना पड़ता है, प्रचारक को इतना अधिक पैसा देना पड़ता है, या तो वो कोई और काम को ले लेगा जो उसे थोड़ा ज्यादा भुगतान करता है, वो ट्रस्टी बोर्ड को एक साथ बुलवा कर और कहेगा अब भाइयों मैं आप यहाँ मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं, आप मुझे एक हफ्ते में कई सैकड़ों भुगतान करते हैं, या ऐसा ही कुछ और कहता है, लेकिन दूसरी प्रेस्बिटेरियन की कलीसिया, इसे पेंटिकॉस्टल कहें या जो कुछ भी है, यहाँ मेरे पास में ही है, उन्होंने मुझसे एक वादा किया है कि वे मुझे इतना इतना अधिक देंगे, ओह मेरे प्रभु, तब एक निर्धन संत के पास क्या है, उनके पास क्या अवसर है? एक बेचारी छोटी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई है, उसके पास क्या है? उनके पास किस तरह का अवसर है? वे ऐसा कुछ भी खर्चा नहीं कर सकते। सो तब प्रभु आपको कुछ तो ऊपर लेकर आता है, आमीन, यही उसी के द्वारा हाथ से उठाया जाता है, इसे पवित्र आत्मा से भरता है और उसे इसके ऊपर प्रमुख प्रधान के रूप में ठहराता है,
वहाँ भेजता है। उसने कहा, मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आओ और उससे सफेद वस्त्र को मोल लो। बाइबल ने कहा, सफेद वस्त्र धार्मिकता संतों की है।
अब मैं विश्वास करता हूँ कि हम आइए 19वें पद के बारे में जानें। मैं सोचता हूँ कि यह 20वें पद के बारे में है, हम आगे हैं, जो सही सही मैं देख सकता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और इस पर समापन करते हुए अब शांत रहे और अब सुनिए, जब हम ऐसा कर रहे हैं, सुनना, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर और द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह सबसे प्रमुख कथनों में से एक है जिसे मैंने कभी नए नियम में देखा है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मैं द्वार पर खड़े होकर और खटखटाता हूँ। इसे आमतौर पर उपयोग किया जाता है पापियों के पुनः विचार के लिए एक हवाला है। क्या ये सही है? हम पापियों को बताते हैं यीशु द्वार पर खटखटा रहा है, लेकिन यहाँ वो कलीसिया के द्वार पर खटखटा रहा है क्योंकि वो एक बार उनके साथ चला था, लेकिन उन्होंने वे उनके संगठन और दुनियादारी और ठंडेपन के साथ हैं, उसे बाहर कर दिया था, वो कलीसिया के बाहर है। अब याद रखें, कलीसिया के युगों से पहले, जैसा कि हम बंद करते हैं, वो सात सोने के धूपदानों के बीच में चल रहा था। क्या ये सही है? जो कि सात कलीसिया के युग हैं, और यहाँ अंत में हम उसे किस कलीसिया के बाहर पाते हैं? लौदीकियन, लौदीकियन कलीसिया बाहर था, उन्होंने उसे बाहर कर दिया था, इसलिए वो बाहर खड़ा हुआ था, वापस अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। क्या ही दयनीय तस्वीर थी! संसार का उद्धार करता कलीसिया के बाहर खड़ा था, जिसे उसने अपने स्वयं के लहू से खरीदा था। उन पर शर्म आती है। मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, उसे बाहर निकालने या बाहर निकाल देने के बाद फिर से वापस अंदर जाने की कोशिश करता है, धीरे से वापस आकर और द्वार पर खटखटाता है। नए करार में यह सबसे बड़ा अनोखा लेख है। मुझे लगता है कि वहाँ इससे बड़ी दुखद बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। इसे देखना कि संसार के उद्धारकर्ता को अपनी खुद की कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया। लौदीकिया युग, उसके ऐसे कर लेने के बाद उसने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या किया था, उनकी धन की अधिकता और हरेक चीज, और वे क्या थे और वे कैसे गुनगुने और इत्यादि थे, और उनके पास वे उसने उन्हें बाहर नहीं निकाला था, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पर ऐसा सब था, अभी भी द्वार पर खटखटा रहा है, वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। किस बात के लिए? उन्हें अनंत जीवन देने के लिए। वे ही लोग जिन्होंने उसे कलवरी पर उसे मार डाला, वे उनके प्राण को बचाने की कोशिश कर रहा था। यह अब तक की सबसे दयनीय तस्वीर है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है, कभी सोचा है। बाहर निकाला गया, उसे किससे बाहर निकाला गया था? अब सुनना मित्रों, क्या ये विचित्र नहीं है? इसकी एक तस्वीर को देखें, इसे अपने हृदय की गहराई में जाने दे। हमारा उद्धार करता जब वो धरती पर था तो उसे अपने ही राष्ट्र से बाहर निकाला गया था, उसे ठुकरा दिया गया, उसे बाहर कर दिया गया। संसार ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे क्रूस पर चढ़ाया, और अब उसकी स्वयं की कलीसिया से उसे बाहर निकाला गया है। उसे कहीं भी नहीं चाहा गया, किसी को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास एक संप्रदाय है, उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं थी। उनके पास एक पोप है, उन्हें उससे ज्यादा अब और क्या चाहिए? उनके पास एक आर्क बिशप है, एक सबसे ऊपर प्रधान है, अब उन्हें और पवित्र आत्मा का कोई उपयोग नहीं था, उन्हें उसकी अब और जरूरत नहीं थी। मसीह, पवित्र आत्मा उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो वे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे अभी अभी आए और उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि वे उसे भूले नहीं थे। वे उसे भूले नहीं थे क्योंकि वे अभी भी उसके लिए गीत गा रहे थे। प्रचारक अभी भी उसके बारे में बात कर रहा था, इसलिए वे उसे भूले नहीं थे। लेकिन उनकी अपनी दुनियादारी और उनके संगठन कह रहे हैं, अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं और इस प्रकार की और उस प्रकार की कोई चीज नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, हर एक बेदारी जो हमेशा हुई, कोई भी, आप जो इतिहासकार हैं, अभी यहाँ से होते हुए नीचे तक इन कलीसियाओं में हर एक बेदारी जो हमेशा से होती आई है, वो इसने हमेशा ही बाहर एक संगठन को लाया था। कोई भी मनुष्य जिसने कभी बेदारी को शुरू किया था, संगठनों के बाहर था, और हर बार जब एक बेदारी शुरू हुई तो उनके पास चिन्ह और चमत्कार और अन्य भाषा में बोलना और चंगाइयां और इत्यादि इस प्रकार से जगह ले रहे थे। जैसे ही उस बेदारी के जन्मदाता की मृत्यु हुई, तब उन्होंने इसे संप्रदाय कर दिया और उसमें से एक संगठन को बनाया और सीधे मृत्यु में चले गए, और परमेश्वर ने इसके साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं किया। यह बिल्कुल सही है। और यहाँ पर वो अंतिम कलीसिया युग में है, द्वार के बाहर खड़ा है परमेश्वर, वो सर्व सामर्थी। ऐसा सोचकर मेरा हृदय टूट जाता है। मेरा प्रभु अपनी स्वयं की कलीसिया के द्वार के बाहर खड़ा है। सांसारिकता और ठंडापन और संप्रदाय और बेरुखी के द्वारा उसे बाहर धकेले जाने के बाद द्वार के बाहर खड़ा है, खटखटा रहा है, वापस अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने कुछ समय पहले इस पर सोचा, मैं बस अपने मेज पर झुक गया और रोने लगा। मैंने सोचा, मैंने हमेशा ही सोचा है, जब यीशु उस बूढ़े फरीसी के घर में वहाँ बैठा हुआ था, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब उसके पांव गंदे पड़े थे, उन्होंने उसके साथ द्वार पर भेंट नहीं की और ना उसके पैर धोए और ना उसका अभिषेक, जहाँ से वो चलकर आया था, गोबर और कचरा लग रहा था। उसके वस्त्र वहाँ से बुहार कर उस कचरे को लेकर आए थे। उसने उस सड़क की पुरानी बदबू को लाया था, जहाँ से घोड़ो और इत्यादि ने कूच किया था, और उस पर उसकी बदबू आ गई थी। वे हमेशा ही पैर को धोते थे, यह रिवाज था। और एक पैर धोने वाला सेवक दरवाजे पर रहता, और जब एक व्यक्ति आता तो वे उसके पैर को धोते और वहाँ पर जाकर उसके लिए एक जोड़ी चप्पल लाते जो उसे फिट बैठती, उसे पहना देते, और वे उसके सिर को अभिषेक करते और उसका, और जिससे उससे अच्छी खुशबू आने लगती और सूरज की किरणों से उसकी गर्दन में जलन होती, तो उसके पीछे से बालों को कंघी करते, वह अंदर चला जाता और ऐसा अतिथि का स्वागत होता है। अब यहाँ इस तरह से वे, यहाँ एक मिनट खड़े होना पैट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ उन्होंने जिस तरह से किया, उन्होंने उसका इस तरह से स्वागत किया। अब मुझे विश्वास है नहीं, जैसे कि यहाँ मैं सोचता हूँ कि यह इसी क्रम में कुछ तो इस तरह से यहाँ है, इस तरह का स्वागत करने के लिए। देखो, और एक दूसरे से गले मिलते हैं और उसका स्वागत किया जाता था। लेकिन जब यीशु इस भोज में आता है, ठीक उसी तरह जैसे वो यहाँ पेंटिकॉस्टल भोज में आता है, किसी ने तो उसे याद किया था। वे उनके प्रशासन में बहुत रुचि रखते थे, बिशप और इत्यादि भी वहाँ थे। यीशु को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी ने उसके पैर नहीं धोए, और वहाँ वह कोने में बैठा हुआ था। वे शायद ही जानते थे कि वो वहाँ पर था। उसके पैरों से बदबू आ रही थी, उसके ऊपर गंदगी लगी हुई थी, धूल लगी हुई थी। और फिर वहाँ सड़क पर से होते हुए एक गरीब वैश्य वहाँ पर आती है। उसके पास केवल उसकी थैली में बस थोड़ा ही पैसा रखा था, और उसने वहाँ पर देखा और उसने यीशु को गंदे पैरों के साथ वहाँ बैठा हुआ देखा। इससे उसका हृदय टूट गया। उसने कहा, यही वो मनुष्य है जिसने उस स्त्री के पापों को क्षमा किया था। यही वो मनुष्य है जिसके लिए मैंने सुना है कि चंगाई के कामों को किया था। वे उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि बिशप और उनमें से सभी आसपास ही थे, उन्होंने उसे बाहर कर दिया था। वहाँ वो, उन्होंने उसे आने के लिए आमंत्रित किया था। इसी तरह से हम करते हैं, हम उसे अपनी सभा में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन फिर जब हम आते हैं तो हम उससे लज्जित होते हैं। ओह, मैं उठकर और नहीं कहूँगा कि प्रभु की स्तुति हो। ओह नहीं, वहाँ जॉन्स बैठे हुए हैं, वे सोचेंगे कि मैं एक पवित्र चीखने चिल्लाने वाला व्यक्ति था, तुम ढोंगी हो। ये सही है, मुझे डर है कि मैं अन्य जुबान में बोलूंगा तो वे मुझे जुबानों वाला व्यक्ति कहेंगे, तुम एक तुच्छ अभागे हो। अब आप याद रखना, ये अंदर जा रहा है, आप देखना, तुम अभागे, तुच्छ, कंगाल, नंगे और अंधे हो, और ये नहीं जानते। यीशु बिना धुले हुए पैर के साथ वहाँ बैठा हुआ था, और एक सड़क की वेश्य, मैं उसे वहाँ जाते हुए देख सकता हूँ। आइए बात करें उसके विषय को एक मिनट के लिए ले लें। मैं उसे वहाँ दुकान में नीचे जाते हुए देख सकता हूँ और वो कहती है मैं, और उसके गालों पर आंसू बहने लगते हैं और उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, यदि मैं इस सामान को वहाँ लेकर जाती हूँ तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे ये पैसा कहाँ से मिला है। वो जानता है कि मुझे ये पैसा कैसे मिलता है, लेकिन मेरे पास केवल वही एक चीज है। यही सब वो चाहता है, बस यही वो चाहता है, समझे। वह परवाह नहीं करता है, तुम बस आओ, मेरी कुछ भी लाने की शक्ति नहीं है। इसलिए उसने कुछ लेप को लिया और वो इसे लेकर आई और वो वहाँ पर गई और उसने सोचा ओह क्या मैं उससे बस मिल सकती हूँ, और फिर वह अंदर चली गई और द्वार के आसपास कहीं तो रुक गई और नहीं, उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया था। सो उसने संगमरमर के पात्र को लिया और उसे तोड़कर पैरों पर डाल दिया उसके पैरों पर और उसके पैरों को धोना शुरू कर दिया और वह रोने लगी। ओह ऐसा उसके लिए होना अवश्य है, यही है जो मैंने हमेशा बाइबल में पढ़ा है। मैं जानती हूँ कि वो इसे पहचान लेगा। और पहली बात जो आप जानते होंगे, उसके पैरों के लिए क्या ही सुंदर पानी था। उसके पैरों पर पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके पास उसके पैरों को पोंछने के लिए कोई कपड़े के टुकड़े नहीं थे, इसलिए उसने हाथों को ऊपर करके और अपने बालों को पकड़ा। सुंदर घुंघराले बाल सारे खुल गए, आंसू उसके चेहरे पर से इस तरह से नीचे बह रहे थे। उसने उसके पैरों को धोया और कभी तो एक बार वो ऐसे करती, उसके पैरों को चूमती, उसने इस तरह से उसके पैर धोए। यीशु गंदे पैरों के साथ था और कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, और आज वो एक गंदे नाम को लिए हुए है, जैसे कि पवित्र चीखने चिल्लाने वाले। ऐसा ही कुछ या इसी तरह से कुछ तो मनुष्य के पास कठोरता नहीं होती है कि उसके लिए खड़े हो। यह प्रतिष्ठित क्रूस को मैं सहन करूंगा, मरते तक मुझे आजाद कर देगा। मैं परमेश्वर के कुछ तिरस्कार किए हुए के साथ रास्ते को लूंगा। मैंने इसके साथ आरंभ किया है। यीशु हे प्रभु, आप मुझे उसमें से होकर ले जाएं, मुझे उसमें से होकर ले जाएं। प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे क्या दाम को देना पड़े। मैं याकूब के जैसा हूँ, एक सिराना, एक पत्थर, इससे क्या फर्क पड़ता है उसने मेरे लिए जो किया है। और ये बेचारी वेश्या वहाँ विलाप कर रही है, रो रही है। और पहली बात जो आप जानते हैं, यहाँ शिमोन खड़ा था, वो बड़ा मनुष्य जिसने उसे वहाँ पर लाया था, कहा इससे पता चलता है कि वो नबी है या नहीं। वो जानता होगा कि वो किस प्रकार की महिला है, वो ढोंगी। तो उसके ऐसा करने के बाद, और यीशु ने अपने पैर कभी नहीं हिलाए, उसने बस बैठकर उसकी ओर देखा और उसे देखता रहा। ओह मैं इसे पसंद करता हूँ, यह कोई बड़ी चीज नहीं है जो हम करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम कभी कभी अधूरा छोड़ देते हैं। उसने उसे देखा, बस उसे वहीं बैठे देखता रहा, कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में जब वो रो रही थी और उसके पैरों को धो रही थी, एक तरह से उस पर ध्यान को खींचा, उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वो सिर्फ उसे देखता रहा, कभी एक शब्द नहीं कहा। बूढ़ा शिमोन वहाँ पीछे खड़ा हुआ था, उसने कहा आप देखें कि वो नबी है या नहीं, क्या तुम लोग नहीं देखते, तुम्हें बताया था। यदि वो एक नबी होता था तो वो जान जाता कि वो स्त्री कौन थी। आप देखो हम यहाँ पर बड़ी कलीसिया थे, आप देखना हम जानते हैं, ऐसा ही है, हम जानते हैं कि वो एक नबी नहीं है, वह इसे जान जाता। उसके बाद, उसके ऐसा करने के बाद, उसके पश्चाताप के आंसू उसके चेहरे पर से नीचे बह रहे थे, उससे यीशु के पैर धुल गए। वो मेरा विश्वास है कि उसने थोड़ा ताजगी को महसूस किया था। हे परमेश्वर, मैं वहाँ पर रहना पसंद करूंगा, मैंने उन्हें फिर से धोया होता। जी हाँ श्रीमान। लड़के, आज के समय में किसी महिला के लिए अपने बालों से पैरों को पोंछना क्या मुश्किल बात नहीं होगी? उसे ऐसा करने के लिए अपने सिर के बल खड़ा होना होगा, जिससे कि उसे पोंछने के लिए पर्याप्त बाल मिल सके। जी हाँ श्रीमान, इसने सब काट दिए हैं। लेकिन वहाँ यीशु के पैर कोई भी ध्यान नहीं। आलोचक वो अपमानित होकर बैठा है कि उसके पैरों पर से बदबू आ रही है। उसने उसे धोया। उसके बाद जब वो उन बातों से होकर गया, उसने उसकी ओर देखा जैसे वो कह रहा हो ठीक है। उसकी ओर देखा, कहा शिमोन, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ तो है। तुमने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और तुम कभी भी मुझसे मिलने दरवाजे पर नहीं आए। तुमने मुझे मेरे पैरों को धोने के लिए कोई पानी नहीं दिया जब मैं अंदर आया। तुमने कभी मेरे सिर को अभिषेक नहीं किया कि सूरज की जलन को मुझसे दूर करे। जब मैं आया तुमने कभी भी मुझे स्वागत का कोई चुम्बन नहीं दिया। लेकिन ये बेचारी स्त्री, ओ प्रभु, ये बाहरी लोग, सड़क पर की एक वेश्या, उसके पास मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं था और उसने उन्हें अपने आंसुओं के साथ धोया। उसके पास उन्हें पोछने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपने बालों को लिया, उसने उन्हें पोछ दिया, उसने निरंतर मेरे पैरों को चूमा है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, उसके पाप जो कि बहुत थे क्षमा हुए हैं। यह सही है, कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पाप जो कि बहुत है क्षमा हुए हैं। और आज जब यीशु पेंटिकॉस्टल संगठनों, बैप्टिस्ट संगठनों, मेथोडिस्ट संगठनों के द्वार के बाहर खड़ा है, फिर से पेंटिकॉस्ट के साथ वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है और लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं, तुम्हारे बाद तुम्हारे सांसारिकता और चीजों ने उसे कलीसिया से बाहर धकेल दिया है। वो बाहर खड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है फिर से वापस अंदर आने के लिए पुकार रहा है, और ओह, यह सबसे दयनीय बात है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है। उसकी कोई जरूरत नहीं थी उसकी, वो बाहर खटखटा रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यह वही बात है जो वो करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्यों? वो बाहर था, उन्होंने कभी उसे बाहर नहीं फेंका, उन्होंने अभी भी उसको गाया, उसके बारे में प्रचार किया, लेकिन उनकी उपस्थिति में कभी भी याद नहीं किया था। ये सही है, वे सीधे चलते ही जा रहे थे। क्यों? उनकी निकट की दृष्टि धुंधली थी, वे उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहे थे, वे धनी थे, वे उस बड़े बड़े संगठन को याद कर रहे थे जो उनके थे, वे इसे बनाने की कोशिश कर रहे थे और अधिक सदस्यों को अंदर लाने के लिए, और उन्होंने उसे याद नहीं किया। नहीं, नहीं, वे अन्य भाषा में बोलना नहीं भूले, वे परमेश्वर के बड़े बड़े जबरदस्त संदेश को नहीं भूले जो हृदय को काट देते हैं और हृदय का खतना करते हैं, संसार की चीजों को फाड़ देते हैं और आपको एक मकई के दाने के टुकड़े की तरह हिलाता है। ओह, वे यदि आप उनके कलीसिया में इस तरह प्रचार करते हैं तो वे आपको बाहर निकाल देंगे। और इसी तरह से पवित्र आत्मा का प्रचार होता है। यीशु ने कहा, तुम सर्प के वंश हो, तुम घास में के सांप हो, और यूहन्ना ने भी कहा, और उन महान अभिषिक्त पुरुषों से हमेशा ही उन्होंने उनसे छिपाने की कोशिश की। यह सही है, लेकिन उन्होंने उसे याद नहीं किया क्योंकि उनके पास यह नहीं था। देखा, तो उनके पास कुछ तो फूलों का था जिससे पीठ पर उन्हें थपथपाते हैं और कहा, तुम बस जुड़ जाओ, अपना नाम यहाँ पर डाल दो और हम तुम्हें अपनी सदस्यता में ले लेंगे और आप दूसरे कलीसिया से अपने पन्नों को ले आओ और हम तुम्हें ग्रहण कर लेंगे और इत्यादि। अब तुम्हारी शपथ प्रत्येक वर्ष कितनी बार होगी? क्या देखते हैं कि ऐसा ही है? धनी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ओह, लेकिन तुम्हें सबसे बड़ी चीज की आवश्यकता है और ये तुम्हारे पास नहीं है। यीशु बाहर खड़ा है जो पेंटिकॉस्ट के साथ वापस आने की कोशिश कर रहा है। क्या आप सोचते हैं कि मेथोडिस्ट कलीसिया में आज रात क्या होगा यदि पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतर कर आता है और वे चिल्लाना, कूदना, अन्य जुबान में बोलना और मदिरा पिए हुए की तरह नशे में लोगों के झुंड की तरह व्यवहार करना आरम्भ करेंगे? क्यूँ? वो सभा उस मेथोडिस्ट कलीसिया को सभा से बाहर फेंक देगा। आप ये जानते हैं, बैप्टिस्ट कलीसिया में क्या होगा यदि ऐसा हुआ? तो वही चीज पेंटिकॉस्टल्स, क्योंकि वहाँ उनमें से बहुत से हैं, यह वैसी ही बात होती है। निश्चय ही, जी हाँ श्रीमान, वे उस व्यर्थ की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे नए कालीनों को भी खराब कर दिया है। यकीनन, ओह मेरे प्रभु, ये क्या ही एक दयनीय झुंड है। ये सही है, खैर ठीक है, वो एक समय उनके साथ था, वह उनके साथ साथ सुनहरे धूपदानों के बीच में चला था, और यहाँ उसका उत्तर है। संप्रदाय और उनकी सांसारिक चीजें, उनके बिशप, कार्डिनल और उनकी सारी दुनियादारी जिसने उसे बाहर कर दिया था और उन्होंने कभी भी उसे याद नहीं किया था। और कलीसिया, अब हम उसे वापस लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? यदि वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया के बाहर है तो हम उसे वापस लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? क्या इसे वापस लाने के लिए लोगों का एक मत वोट होगा? क्या यह एक नए पोप, नए कार्डिनल के चुनाव को लेगा? या हो सकता है ये एक नए संप्रदाय को ऊपर लाएगा? यह कभी भी इसे नहीं लेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। एक नया संप्रदाय इसे नहीं करेगा, एक नया कार्डिनल इसे नहीं करेगा, एक नया पास्टर इसे नहीं करेगा, एक अच्छी वेतन को पाने वाला सुसमाचारक इसे नहीं करेगा। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेगा सिवाय आपके खुद के। हम उसे कैसे अंदर लाते हैं? ना ही एक वोट से। नहीं श्रीमान, हम यीशु को वापस लाने के लिए वोट नहीं देते क्योंकि वो अंदर नहीं आएगा। यहाँ है ये, यदि कोई भी मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर द्वार को खोलेगा। अब हम जानते हैं कि तब द्वार क्या है। यदि कोई भी मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर द्वार को खोलेगा, नहीं, नहीं। यदि कोई कलीसिया, कोई संप्रदाय, नहीं श्रीमान, वह उनके साथ व्यवहार नहीं करता है। वे मर चुके हैं और आरंभ से ही खत्म हो चुके हैं। वो इससे घृणा करता है। उसने हमेशा से ही इससे घृणा की है। उसने कहा कि वो इससे घृणा करता है और वो आज रात भी इससे घृणा करता है। लेकिन यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी मेथोडिस्ट मनुष्य, कोई भी बैप्टिस्ट मनुष्य, कोई भी प्रेस्बिटेरियन मनुष्य या कोई भी कैथोलिक मनुष्य, कोई चर्च ऑफ गॉड का मनुष्य, नाजरीन मनुष्य, पेंटिकॉस्टल मनुष्य, जो कोई मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर और द्वार को खोलेगा, मैं अंदर आकर उसके साथ भोज करूंगा और वो मेरे साथ। यही पेंटिकॉस्टल कलीसिया के लिए संदेश है। पेंटिकॉस्टल संगठन को पुनः जीवित करने की कोशिश न करें, लेकिन पेंटिकॉस्टल की आशीषों को व्यक्तिगत हृदय में पुनः जीवित करें। यही एकमात्र तरीका है और मैं उसके साथ भोज करूंगा और वो मेरे साथ। कलीसिया के लिए संदेशवाहक क्या करता, कलीसिया के लिए संदेश हमें तब क्या सिखाता है, हमें क्या सिखाता है? न ही आत्मा में बढ़ोतरी, नहीं श्रीमान, आत्मा की गिरावट। हम हर समय से गिरावट में हैं। वो विधि, वो कलीसिया के संदेशवाहक और हर कलीसिया युग के संदेश ने संप्रदायवाद की निंदा की। कलीसिया के लिए हर एक संदेश कलीसिया लगातार गिरावट पर थी और वे इसे नहीं सुनते। उस कलीसिया के संदेश को संप्रदायों ने अनदेखा किया था और इसने संकरित मसीह बना दिया, कहलाने वाले मसीह। यह सही है, जो परमेश्वर या पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यह उतना ही सच है जितना कि मैं आज रात इस मंच पर खड़ा हूँ। केवल भले गुनगुने सदस्यों को ही उसके मुंह से बाहर उगला जाएगा। पौलुस ने चेतावनी दी, अन्य जाति एक डाली थी। अब मैं आप में से कुछ लोगों से चाहता हूँ, यदि आप चाहें तो रोमियो को निकालें, 11:15-27 केवल आप इसे वहाँ चिन्हित कर सकते हैं, आप सभी। और फिर यह देर हो रही है, बस जाने से पहले मैं इसका हवाला दूंगा, क्योंकि यह एक अब रोमियो, यदि आप इसे लिख कर रखना चाहते हैं, 11:15-27। पौलुस ने उन्हें बताया, वहाँ के अन्य जाति लोगों को बताया, रोमियो। उसने कहा, यदि परमेश्वर, अब सुनना, जैसे हम कलीसिया के युग को समाप्त कर रहे हैं, पौलुस ने कहा, यदि परमेश्वर ने मूल जैतून के पेड़ को नहीं छोड़ा, लेकिन अविश्वास के कारण इसे काट दिया, क्या यह सही है? किस कारण से उन्हें काट दिया गया? क्योंकि उन्होंने पेंटिकॉस्ट को अस्वीकार कर दिया था, क्या यह सही है? पेंटिकॉस्ट के दिन उन्होंने मजाक उड़ाया और पवित्र आत्मा की निंदा की। जब यीशु यहाँ धरती पर था, उसने कहा कि उन्होंने उसे बालजबूल कहकर बुलाया, कहा कि वो एक शैतान था और वह एक भविष्य बताने वाला है, जो कुछ भी और है। उसने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा करता हूँ, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो तुम इसके विरोध में नहीं बोलना, क्योंकि तुम इसके विरोध में बोलते हो, इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और याद रखें कि जब यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी, अन्य जातियों के पास नहीं जाना, क्या यह सही है? लेकिन बल्कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। उन्होंने खुद को कैसे दोषी ठहराया? पवित्र आत्मा की निंदा करके, परमेश्वर की आत्मा को एक अशुद्ध वस्तु कहकर, उसका मजाक उड़ाया जब वे आत्मा में नाच रहे थे और इत्यादि। पेंटिकॉस्ट के दिन पर उसी शहर में उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। टाइटस ने उन्हें वहाँ पर मार डाला और उनका फाटकों से होकर लहू बाहर बहने लगा। उन्होंने अपने ही बच्चों को खाया और हर एक चीज को किया उसी सदी में, और यह सही है। दुनिया के राष्ट्रों में का सबसे बड़ा एक राष्ट्र सबसे निचले स्तर का बन गया और बिखरे हुए धरती के चार हवाएं, किस कारण से? क्यों? अविश्वास। और वो मूल टहनी थी, मूल पेड़ इज़राइल। और क्या पौलुस वहाँ नहीं कहता है, ठीक वहाँ पर किसी वो वचन मिला है, क्या मिल गया? पेट खड़े होकर 15-27 तक पढ़िए, भाई पेट पढ़ते हैं, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर न होगा? जब भेंट का पहला फल पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें से साटा गया था, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, अपने आप में डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। सुनना, अविश्वास तो ठीक है, आगे पढ़ना, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा, और वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई के पेड़ में साटा गया था, तो वे जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। क्या आप इसे समझ गए? पौलुस ने कहा, यदि इसराइल आकर यहाँ पवित्र आत्मा के चिन्ह को देखते हैं और काट दिए, याद रखें, क्योंकि उन्होंने पौलुस के संदेश को ठुकरा दिया। यीशु के नाम में बपतिस्मा, पश्चाताप करना और यीशु के नाम में बपतिस्मा, चिन्ह और चमत्कार विश्वासी के पीछे जाते हुए, और उन्होंने इसे ठुकरा दिया। और उन्होंने कहा, तो देखो, हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्या ये सही है? आइए देखें। मेरा विश्वास है कि उस जगह पर जहां वे पहले मसीही कहलाए गए थे, वहां इफिसुस पर, तो ठीक है, अंताकिया में थे। अब यदि पहला पेड़ पवित्र था तो उसकी डालियां पवित्र थी, वो मूल पेड़, और क्योंकि उन्होंने पेंटिकॉस्टल संदेश पर अविश्वास किया जिसे पौलुस प्रचार कर रहा था, क्या ऐसा ही है? परमेश्वर ने उन्हें काट दिया और एक जंगली जलपाई के पेड़ को ले लिया, जो कि हम अन्य जाति थे, और हमें उसमें साट लिया कि हम जी सके, उस पेड़ की वस्तु बन सके। अब इस दिन में कितना अधिक होना चाहिए, जबकि हम पेंटिकॉस्टल के संदेश को अस्वीकार कर रहे हैं। यही कलीसिया युगों में से होते हुए आगे आ गया है। परमेश्वर उस पुराने जंगली पेड़ को किसी भी तरह से निकालने में कितना अधिक सक्षम है, और दूसरे को अंदर आने देगा, क्योंकि वो इसे ठुकरा देगा अविश्वास के कारण। अब आज सुबह के पाठ के साथ ये जुड़ता है। आप जानते होंगे कि हम अब कहाँ खड़े हैं, क्या आप नहीं जानते? हम अंत समय पर हैं। अन्य जाति कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए, इसके रैप्चर के लिए, और पवित्र आत्मा को इसमें जारी करने के लिए, जिससे कि ये यहूदियों पर आ जाए और यीशु अपने आप को उन पर प्रकट करे, 144,000 को मोहर करे। आप वहाँ हो, मूल पेड़ को वापस लाते हुए आशीष में वापस इसराइल में। यीशु आपके द्वार के बाहर खड़े होकर हर समय नहीं खटखटाएगा। वहाँ एक समय है जब उसके लिए बहुत होगा और मुड़ जाएगा। उसके बाद आप खटखटाएंगे, लेकिन आपको वो कभी नहीं मिलेगा। आ जाओ जबकि समय है, आ जाओ जबकि वहाँ एक खटखटाना है। आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से कम किसी भी चीज से समझौता ना करें, जैसे उन्हें पेंटिकॉस्ट में मिला, उसी तरह के पानी के बपतिस्मा के साथ वही चीजें जो उन्होंने वहाँ की थी। आप इससे कम कुछ और अपने हृदय में कुछ भी न आने दें। अब आपके लिए जो मेरे कैथोलिक मित्र हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। आप कुआरी मरियम पर विश्वास करते हैं। कुआरी मरियम यीशु मसीह की माँ होते हुए उसे पेंटिकॉस्ट के लिए जाना था और पवित्र आत्मा से भरना था, और उसने एक मदिरा पिए हुए नशे में व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। वो उन 120 में से एक थी जिनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। अन्य जुबान में बोलना और वहाँ पर एक मदिरा पिए हुए महिला की तरह व्यवहार करना परमेश्वर की आत्मा के नीचे। और यदि कुआरी मरियम को महिमा में जाने के लिए ऐसा करना था, तो भला आप इसमें कैसे जाएंगे? क्या इससे कुछ भी कम लेकर? इसके बारे में सोचें, ये सही है। बैप्टिस्ट यहाँ पीछे बैप्टिस्ट प्रचारक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसा बैप्टिस्ट को भी कहा गया है। यह हरेक के लिए है, परवाह नहीं है ये कौन है। इसलिए केवल कलीसिया से जुड़ना और एक धर्म मत को बोलना और हर रविवार सुबह कलीसिया जाना आपके लिए मात्र बिंदु भी भला नहीं करता। आप केवल परमेश्वर का मजाक बना रहे हो। या तो एक सच्चे मसीही बनो या बिल्कुल भी मत बनो, गर्म बनो या ठंडा। या तो बाहर हो, क्योंकि आप नहीं हो सकते। आपने कभी भी एक काला सफेद पक्षी नहीं देखा। आप एक मदिरा पिया जो होश में है ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। आपने एक पापी संत कभी नहीं देखा। नहीं, आप नहीं देखते। वे उन्हें ऐसा नहीं बनाते हैं। आप या तो पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए हैं और आप में परमेश्वर रहता है, या आप बिल्कुल भी नहीं भरे होते हैं। आप हैं या आप नहीं हैं। इसलिए आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए कि यीशु आपके द्वार पर खड़ा है। और यहाँ परमेश्वर के प्रतिज्ञा को याद रखें, जिसे वो इन दिनों में करेगा। किसके कारण? अस्वीकार करने के। किस वजह से इसराइल को काट कर अलग किया गया? वो मूल पेड़, क्योंकि उन्होंने पौलुस के पेंटिकॉस्टल संदेश को अस्वीकार कर दिया था। और क्या आप विश्वास करते हैं कि यह आखिरी कलीसिया युग है? बाइबल ने ऐसा कहा। और उनके साथ क्या होने वाला है? पेंटिकॉस्टल संदेश को अस्वीकार करने के कारण उन्हें काट कर अलग किया जाएगा, और उसके बाद परमेश्वर यहूदियों के पास फिर से लौटेगा और सारा इसराइल तब बच जाएगा, क्योंकि वो उन्हें एक व्यक्तिगत रूप में नहीं एक राष्ट्र के रूप में लेगा। लेकिन आपके और मेरे लिए यह व्यक्तिगत है, क्योंकि वह यहूदियों के लिए आया। प्रेरितों की काम की पुस्तक में वह अन्य जातियों को लेने को आया, उसके नाम के लिए अन्य जातियों में से कुछ लोग को लेने, जो उसकी दुल्हन है। कुछ लोग एक यहाँ से, एक वहाँ से, एक यहाँ पर, और वो हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है। और जाति, मत या रंग की परवाह किए बिना वह हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है। ये उसका फूलों का गुच्छा है, जिसे वो अपनी वेदी पर रखेगा। लेकिन यहूदी होने पर उसने हमेशा ही एक राष्ट्र के रूप में इसराइल के साथ व्यवहार किया। वे लोगों का एक राष्ट्र है, उसका राष्ट्र। मैं आज रात खुश हूँ कि हमारे पास ये संदेश है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने भाग लिया, और आपकी भागीदारी की मैं बहुत ही सराहना करता आया हूँ। मैं उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आभारी हूँ कि उसने मुझे देखने दिया जो मैंने देखा है, और इस कलीसिया को प्रचार करने में सक्षम हुआ, और अब यह मेरे हृदय से जा चुका है। क्योंकि कभी कभी पवित्र आत्मा मेरे हृदय से व्यवहार करता है, मैं इसे निकाल नहीं सका। मुझे बस इसके साथ जाना था। दो चीजों को करने की मुझे अगुवाई महसूस हुई। भाई मूर के साथ सभा के लिए चिवड़ेपोर्ट लुइजियाना जाऊं, और वहाँ मेरी पत्नी बैठी हुई है जो आपको बता सकती है। हफ्तों तक मैं लगभग विनती करता रहा, मैं चिवड़ेपोर्ट जाना चाहता हूँ, क्यों? और हर कोई चिवड़ेपोर्ट में था, अब जानता होगा क्यों। उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा या सुना था? हर जगह से आने वाले प्रचारक, बैप्टिस्ट और विभिन्न प्रकार के लोग थे। एक मनुष्य ने कहा कि उसने बढ़कर अपना हाथ बर्फ के बक्से पर डाला और पवित्र आत्मा उस पर आया और कहा, शिवरिपोर्ट लुइजियाना में जाओ, यह आपको वहाँ बताया जाएगा कि क्या करना है। उसे मेरा नाम बताया और की पता कहा, वह तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। मैंने कहा, तालाब सीढ़ियों के नीचे खुला हुआ है, आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की आवश्यकता है। और वहाँ इस तरह की चीजें हुई, लोग बोल रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे और चीजों का अनुमान लगाना जो ठीक वहाँ हमारे बीच घटित हुई। तब मैंने कहा, मुझे अवश्य ही जेफरसन विले जाना चाहिए और इस पुस्तक को लिखना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझे यहाँ कितना समय तक रहना होगा। लेकिन यदि मैं इसे व्यक्त करता हूँ और यह लिखावट में चला जाता है, तो मेरे जाने के बाद शब्द तो जीवित रहेंगे। मैंने इतिहास को लिख कर रखा है जो पुस्तक में लिखा जाएगा, और मैं इसे कलीसिया के सामने बताने के लिए आता हूँ, जिससे कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा को पाऊँ, क्योंकि मैं इन चीजों को अपने आप से नहीं जानता। ये सच है, यही प्रभु के नाम में है, ये सच है, मैं उन्हें नहीं जानता था। अब मैं आजाद महसूस कर रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए संदेश को लाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम मार्ग के अंत में हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के प्रकटीकरण के लिए घड़ी यहाँ पर है, ताकि हमारे बीच में ज्ञात हो जाए। और मैं नहीं जानता हूँ कि यह कितने समय के लिए होगा, लेकिन वो घड़ी बहुत ही नजदीक है। हम उस एक महान के ऊपर आने के लिए देख रहे हैं। हो सकता है वो मेरे दिन में आया हो, हो सकता है वो जवानी के दिन में आया हो, मैं नहीं जानता। वो हो सकता है अब वो हमारे बीच में हो, हम नहीं बता सकते। पवित्र आत्मा हमें उस समय तक नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर है, फिर जब यह अगुवाई करने वाला हमें यहाँ पर ले जाएगा, वो अब भी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया होगा, वो एलिया होगा, अवश्य ही वो आ जाएगा, क्योंकि वह अगुवाई करने वाला होगा जो बच्चों के हृदय को फेरेगा या बच्चों के हृदय को पिता के संदेश की ओर फेरेगा, हमारे स्वर्गीय पिता के संदेश की ओर वापस उस पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब उसने उसकी आत्मा को ढेल दिया, जो कि छोटी सी पंक्ति है, मैं इसे इतिहास और बाइबल के अनुसार बस इतना करीब ला सका और दिखा सका कि यह बात ही कलीसिया युगों में से होती हुई आई है और आज ये ऐसा है। ये दिखाया कि वे संप्रदाय परमेश्वर के सामने एक शापित है। मैं आशा करता हूँ यह आपके मन में स्थापित हो गया है, बाइबल के द्वारा, प्रेरितों के काम के द्वारा, इतिहास और सारी चीजों के द्वारा। वो और ऐसा कोई एक समय भी नहीं है कि परमेश्वर ने कभी अपने कलीसिया का संगठन किया हो। संगठित कलीसियाओं की माता रोमन कैथोलिक धर्म सत्ता है। रोमन कैथोलिक कलीसिया ये संगठनों की माता है, और जैसे ही किसी भी प्रोटेस्टेंट झुंड में बेदारी आरंभ होती है, वे सीधे पीछे चले जाते हैं और उसी काम को करते हैं। और बाइबल ने कहा वो एक वेश्या थी और उसकी अपनी पुत्रियां थी जो उसकी कलीसियाएं थी, उन्हें स्त्रियां होना था वेश्या होने के लिए, वहाँ है वो, तो हम स्थिर हो रहे हैं। लेकिन उसने यह भी कहा, डर मत छोटे झुंड, ये तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें स्वर्ग राज्य को दे। तो होने पाए हम सब उस दिन पर, आप जो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, जो कुछ भी हैं, जो कोई भी द्वार को खोलेगा, मैं अंदर आकर और उसके साथ भोज करूंगा। होने पाए हम गिने जाएं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, होने पाए हम उस दिन पर उस छोटे झुंड में गिने जाएं, होने पाए कि हम उस छोटे झुंड का भाग बने जो रुका हुआ होगा जब वो आता है, जैसे वो इसे दुनिया भर में से उठाने के लिए आता है, क्योंकि वो रैप्चर विश्व संबंधी होगा। दो जन बिस्तर पर होंगे, मैं एक को ले लूंगा, दो जन खेत पर होंगे, मैं एक को ले लूंगा। यह दिखाता है कि यह एक तरफ धरती पर रात होगी और दूसरी तरफ दिन का उजियाला। देखो तो यह है, दो जन बिस्तर पर होंगे, दो जन खेत पर होंगे, देखो मैं उनमें से एक को ले लूंगा। और जैसा कि मैंने आज सुबह कहा, आप इन दिनों में से एक दिन सड़क पर किसी गाड़ी को चलाकर जा रहे होंगे, माँ से बात कर रहे होंगे, और आप यहाँ वहाँ देखेंगे, वह जा चुकी होगी। आप टेबल पर बैठे रहेंगे अपनी कॉफी को पीते हुए, या अपना नाश्ता खा रहे होंगे, या कुछ तो और। और पहली चीज जो आप जानते हैं, यहाँ वहाँ देखेंगे और पिता अब वहाँ पर नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये आ रहा है और हम नहीं जानते कि कौन सा समय है, लेकिन यह बात ऐसी है, जब ये खत्म हो जाता है तब ये खत्म हुआ है, उसके बाद आप इसके विषय में कुछ भी और नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने इसे बहुत पहले समय सुना है, लेकिन आप इसे अपने लिए आखिरी बार सुनने जा रहे हैं। ये सही है, यह होने जा रहा है क्योंकि यह प्रभु का वचन है। और याद रखें, क्या यह इन आठ रातों के दौरान कभी भी विफल रहा है जिसे मैं प्रचार करते आ रहा हूँ? लेकिन जो यीशु ने यहाँ कहा था वो पूरा हुआ है, और बिल्कुल उसी तरह हर कलीसिया युग में पूरा हुआ है, और हम इसे कलीसिया युग में देखते हैं ठीक इसके अंदर, और बिल्कुल उसी घड़ी में, यहाँ तक आज सुबह भी कुआरियों का उदाहरण लेते हुए, उसी समय पर वो सोई हुई कुआरी, अब आपको याद होगा बाइबल ने कहा कि सोई हुई कुआरी जब वो पुकार होने लगी, देखो दूल्हा आता है, प्रभु का आगमन, वचन का प्रचार होता है। और फिर क्या हुआ, समय नजदीक है, परमाणु बम और सब कुछ तैयार है, प्रचारक रास्तों पर दौड़ रहे हैं और संदेश को जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं, और जैसे ही ऐसा वे करते हैं, बड़ी बड़ी कलीसिया, तब सोई हुई कुआरी कहा, आह ठीक है, हम लंबे समय से प्रेस्बिटेरियन थे, हो सकता है हम इसका अध्ययन करेंगे और पता करेंगे। हाँ, आप जानते हैं मेरा विश्वास है कि हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और वे पर्चे बना रहे हैं और सब कुछ अब इसके बारे में लिख रहे हैं, इसे शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा, क्या आप हमें इसमें से कुछ देंगे? और उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पास हमारे लिए ही बस पर्याप्त है। सो जब वे पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करने के लिए गए, कलीसियाओं की तरह बड़ी बड़ी बढ़िया कलीसियाएं जो आज कर रही हैं, वे संगठनाएं, जब वे तेल को लेने के लिए चली गई, तो दूल्हा आ गया, तो वे ठीक अभी लेने की कोशिश कर रही हैं। बड़ी बड़ी कलीसियाएं, संगठनाएं, वे इसके विषय में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सभाओं को कर रहे हैं, उन संगठित कलीसियाओं में कहते हुए, हमें पेंटिकॉस्टल की आशीष को पाने के लिए वापस जाना है, हमारे पास कलीसिया में दिव्य चंगाई करने वाले होना है, हमारे पास अन्य भाषा बोलने वाले के साथ प्रचारक होना है, हमारे पास अन्य भाषा का अनुवाद करने वाले होना है, हमारी अपनी कलीसिया में ये सारे आत्मिक दान होना है और हमें अभी सभाओं को शुरू करना होगा और इसे करना आरंभ करना होगा। वे परिषद बनने जा रहे हैं इसे आरंभ करके, जबकि वे ऐसा करने के लिए चले गए हैं। यह वही वो समय है जब वो दूल्हा आता है और उन्हें ले लेता है जिनके पास उनके दियों में तेल होता है और वे चले जाते हैं। उसके बाद जब वे आते हैं और क्या होता है, उन्हें बाहरी अंधकार के अंदर डाल दिया जाता है, वो बड़ा महासंकट का समय काल जहाँ पर रोना और शोक करना और दांतों का पीसना होता है, जबकि दुल्हन स्वर्ग में है, ओह प्रभु। उसके बाद उस 3.5 वर्ष के अंत में वो यूसुफ की तरह आएगा और अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करेगा। यह पूरी तरह रोने का कारण होगा और वे कहेंगे, वे अपने परिवारों को अलग कर देंगे और रोएंगे और कहेंगे, तुम्हें वे घाव के निशान कहाँ से मिले, और भेजा गया वे लोग जिन्होंने उसे भेजा था उसे देखेंगे और वह खुद को अपने भाइयों के सामने प्रकट करेगा। वह अभी अपने कलीसिया के लिए खुद को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने उसे बाहर धकेल दिया है और वो अभी भी खड़ा है, खटखटा रहा है, कह रहा है, क्या वहाँ कोई और एक है, वो एक जो मेरे लिए द्वार को खोलता है और मुझे आने देगा और अपने साथ बात करने देगा। ओह मैं खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ इस बारे में कि बहुत वर्ष पहले, लगभग 28 वर्ष पहले, मैंने मेरे हृदय में उस दस्तक को महसूस किया और मैं वो अंदर आ गया। मैं उसके साथ भोज करता आ रहा हूँ और तब से लेकर वो मेरे साथ, और मैंने पेंटिकॉस्टल आशीष को पाया है, पवित्र आत्मा को पाया है। मेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर मैंने बपतिस्मा लिया था। केवल एक बार मैंने अपने जीवन में कभी बपतिस्मा लिया था, एक ही बार, जब मैं बस एक छोटा लड़का ही था। कोई भी मुझे नहीं बता सका कि 3 परमेश्वर थे। नहीं, आप मेरे गले के नीचे जबरदस्ती उतार नहीं सकते, आप इसे किसी को भी नहीं दे सकते हैं। जो कोई भी ये जानता है कि परमेश्वर क्या है, ये सही है। तो जब मेरा बपतिस्मा हुआ, एक बैप्टिस्ट प्रचारक ने मुझे बपतिस्मा दिया। मैंने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। डॉक्टर रॉय ई डेविस ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जब मैं बस एक लड़का ही था, समझे। ये सही है, इसलिए मैंने इसे विश्वास किया। मैं इसके साथ बना रहा हूँ और मुझे पता है कि यह सत्य है, यह परमेश्वर का अनंत वचन है, यह सही है, यह सही है। I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be our boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and His power is yet the same. I'm so glad that I can say. यदि आप खुश हैं, तो अपने हाथों को उठाएं। एक बार जब आप उसके हो जाते हैं, तो आप सारे पापों से ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। What he
did for them that day, he'll do for you the same.
अब आइए हाथों को मिलाएं सामने पीछे और आसपास।
क्या आप खुश नहीं हैं कि आप उनमें से एक हैं? मुझे यह पसंद है, शोर शराबा करने वाला झुंड।
शांत हो जाएं, चुप हो जाएं। हम आपकी हमारे प्रति भलाई और करुणा के लिए कैसे आपको धन्यवाद दें? पिता, हम जो अयोग्य लोग हैं, यह सोचकर कि आप अपने संदेश की पुष्टि करें, प्रभु लोगों से प्रतिज्ञा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपकी दया उन पर बनी रहे। यदि यहाँ कोई ऐसा है जो उसे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता है, तो आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में ठीक अभी पाना चाहते हैं? क्या आप अपने पैरों पर खड़े होंगे जबकि हम आपके लिए प्रार्थना को करेंगे? उसने ये कहा है कि वो उसने वहाँ इस संदेश को दिया और वो आपके लिए उसके वचन की पुष्टि करना चाहता था। यदि यहाँ कोई ऐसा है जो उसे नहीं जानता है और उसने उसकी आत्मा को नहीं पाया है, तो वो आपसे बोल रहा है। अच्छी बात है कि एक वहाँ पीछे है। क्या आप बस अपने पैरों पर खड़े होंगे भाई? वह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना चाहता है। क्या ऐसा ही है भाई? परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। क्या कोई और दूसरा व्यक्ति उठकर और कहना चाहेगा, मैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना चाहूँगा? परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। अच्छी बात है, बस अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। केवल अपने पैरों पर खड़े रहें। क्या कोई भी और होगा जो पवित्र आत्मा को पाना चाहता है और बपतिस्मा लेना चाहता है, जो ठीक अभी हमारी प्रार्थना में याद करवाना चाहता है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना? क्या कोई और है इससे पहले कि मैं कहूं कि मैं जो करने पर हूं, खड़े होकर और इसमें शामिल होना चाहेगा?
वुड यू बी नंबर्ड एज वन ऑफ हिज फोर?
क्या आप ऐसा करोगे? भीतर से बेदाग रहो। वो फिर से आ रहा है, क्या आप उसके बैरी बनना चाहेंगे या आप उसकी संतान बनना चाहेंगे? उस सुबह को क्रोधित परमेश्वर यीशु के लहू के अलावा कुछ भी और नहीं पहचानेगा। वो कभी भी नहीं, आपकी कलीसिया की सदस्यता उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगी, लहू के अलावा कुछ नहीं।
Can wash away my sin, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord.
क्या वहाँ कुछ और है? कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। भाइयों बहनों, संसार डूब रहा है, वह खत्म हो चुका है। धीरे धीरे बजाएंगे टेडी। यदि आप चाहें तो वहाँ एक सोता है जो लहू से भरा है, इमैनुअल की नसों से बह रहा है। अब दोस्तों, आप जो अपने पैरों पर खड़े हैं, प्रभु यीशु की मधुरता को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं, वही बाइबल जो हमें बताती है कि ये चीजें घटित होंगी, वे उन्हें बिल्कुल उसी प्रकार पूरी करता है जिस तरह से उसने प्रतिज्ञा की थी। अब वो प्रतिज्ञा, पतरस ने कहा, यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए और जो आगे आने वाले हैं, यहाँ तक जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। आप खड़े हुए हैं क्योंकि आप परमेश्वर की आशीष को अपने ऊपर चाहते हैं, और उसके सेवक होने के नाते मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, और मैं सोचता हूँ कि यदि आप अपने हृदय में ऐसा कर सकते हैं, यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप परमेश्वर से यह प्रतिज्ञा करेंगे, परमेश्वर मैं इस समय से लेकर अपने पैरों पर खड़े होकर पवित्र आत्मा के इस बपतिस्मा की मांग कर रहा हूँ। मैं लगातार प्रार्थना करता रहूँगा और तब तक रुका रहूँगा जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा से भर नहीं देते। क्या आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रतिज्ञा को करेंगे? मैं लगातार प्रार्थना करूँगा, लगातार, जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा की मधुरता और भलाई से भर नहीं देते। जैसे कि हम हमारे सिरों को झुकाते हैं, मैं आपके लिए अपनी प्रार्थना को रखता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, वे आपकी उपस्थिति के चिन्ह हैं। वे जानते हैं कि ये वचन सत्य है क्योंकि वे आपके हैं। वे जानते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है क्योंकि वे परमेश्वर के वचन हैं, और वे दृढ़ निश्चय रहे हैं कि उन्हें आपकी आवश्यकता है, कि उन्हें अपने जीवन में पवित्र आत्मा की मधुरता की जरूरत है, उन्हें जय पाने वाली सामर्थ को देने के लिए, और वे सर्वोच्च से सामर्थ को प्राप्त करेंगे, सामर्थ को प्राप्त करें ताकि एक मसीह जीवन को जिए, कि सामर्थ को प्राप्त करें ताकि परीक्षाओं पर जय पाएं। जैसे कि वो गीत जो हम अभी गा रहे थे, वे ऊपरी कोठरी में इकट्ठा हुए और उसके नाम में प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया था और सेवा के लिए सामर्थ आ गई। यही है जो वे चाहते हैं कि सेवा के लिए उन पर सामर्थ आ जाए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके एक सेवक के रूप में, जैसा कि आपने उन्हें अपने हाथों को उठाते हुए देखा है, उन्होंने आपसे एक शपथ ली है और एक प्रतिज्ञा की है कि वे कभी भी नहीं रुकेंगे, वे इसे एक तरफ नहीं रखेंगे, लेकिन वे प्रार्थना करेंगे जब तक आप उन्हें भर नहीं देते। प्रभु, जो उनके जीवन में आपके पवित्र उपस्थिति का एक संतोषजनक भाग है, मैं उनकी ओर से प्रार्थना को रखता हूँ प्रभु, आपके सेवक के रूप में, कि वे पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इस कलीसिया को तब तक नहीं छोड़कर जाएंगे जब तक कि ऐसा न हो जाए, कि वे यहीं पर रुके रहें जब तक कि प्रत्येक प्राण पवित्र आत्मा से भर न जाए। इसे प्रदान करें प्रभु। आप परमेश्वर हैं, स्वर शक्तिमान, आप संसार के पापों को दूर करने के लिए देह में प्रकट हुए थे, आप तीसरे दिन जी उठे, ऊंचे पर चढ़ गए और आप आज रात को यहाँ पर हमारे बीच हैं और पवित्र आत्मा के नाम में। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप जो हमारे बहुमूल्य प्रभु हैं, उनमें से प्रत्येक को आप अपने स्वयं से भर देंगे और होने पाए वे आपके राज्य के लिए एक आशीष हो और उस संसार में जो आने पर है। और एक दिन जब आप मार्ग के अंत में पहुंच जाते हैं, ऐसा यह आज भी हो सकता है, हम नहीं जानते यह कब होगा, लेकिन होने पाए मैं सक्षम हो जाऊं प्रभु, उन लोगों में गिना जाऊं जो रैप्चर में जाते हैं। होने पाए ये वे लोग होने दो जो रैप्चर में जाएंगे। होने पाए प्रत्येक व्यक्ति दिव्य उपस्थिति और सारे जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो परमेश्वर के हैं, रैप्चर में जाएंगे। आज रात इन्हें ले ले पिता, वे अब आपके हैं, मैं उन्हें आपको सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग जो इन लोगों के पास खड़े हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है, उठकर उन पर अपने हाथ को रखें। अब अपने हाथों को परमेश्वर की ओर ऊपर उठाएं और केवल उसकी स्तुति करें, कहें धन्यवाद प्रभु, मैं अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर मैं आपको स्तुति दूंगा, मैं आपको आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी भलाई के लिए और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रिय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं हमें देने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं जो आपने कहा, हम आप पर विश्वास करते हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? कहें प्रभु की स्तुति हो। टेडी, मुझे बस एक और गाना। हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, यह मेरे लिए स्वर्ग के जैसा है। क्या यह आपको खुश होने को नहीं लगाता है? अच्छा है, किसी से तो हाथ मिलाते हुए कहें प्रभु की स्तुति हो, यह स्वर्ग के जैसा है। प्रभु, अब शांति पूर्वक हमारे सिर को झुकाए हुए
Just breathe and hold.